Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desha Tarine Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya
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 Narayanam Namaskrityam
Naram Chaiva Narottamam
Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Antarashtra Krishna Bhavanamrita Sangh, Sanstapik Acharya Sri Krishna Kripa Murti, Abhay Charanarvinda Bhagavati Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Karuna Kripa se Jhansi Iskan Mandir ke Bhakton ke Sahyog se और श्रीमान परशुराम जी अग्रवाल और श्रीमती सविता देवी के प्रेरणा और सहयोग से आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे दिन के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के महात्म में ऐसा आता है कि स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर इंद्र सुखदेव के सामने रखा का ये अमृत तो पिला दीजिए परीक्षित महाराज को, तो फिर सांप के डसने से मरेगा नहीं और भागवत का अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव महाराज ने इंद्र को कहा, तुम्हारे स्वर्ग के अमृत को तुम भागवत अमृत के तुलना करके उसकी ये उसका मोल लगा रहे हो, कीमत समझ रहे हो, उठाओ तेरा ये कलश अमृत का, जाओ तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो। इंद्र को भागवत नहीं सुनाया, तुम समझते हो कि अमृत के कलश के बदले में तुम्हारे को भागवत का अमृत मिलेगा। तेरे स्वर्ग का अमृत कैसा है, तेतं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम खीन पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। ये तो पुण्य करके अमृत पियो, स्वर्ग का पुण्य क्षीण हो जाए फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। ये तो भागवत अमृत क्या है, धर्मात्मिदम अमृतम, ये धर्म का अमृत है, ये भागवत का अमृत है, ये तो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो इसकी तुलना इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। पहले स्कंद में ही कल हम भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण करुणामय कैसे पांडवों के साथ अंतरंग मैत्री निभा रहे थे, उसका श्रवण कर रहे थे। भागवत का मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज है, जिन्होंने भागवत भगवान की प्राप्ति के लिए सुनी। सनकादि ऋषियों ने तो यज्ञ के अंग में भागवत को सुना, व्यास देव ने भी चार श्लोक नारद से भागवत के जन कल्याण के लिए सुने, लेकिन परीक्षित महाराज ने भागवत भगवत प्राप्ति के लिए सुना, इसलिए उसको मुख्य श्रोता श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित महाराज है। ऐसा श्रोता तब जन्म लेता है जब तीन पीढ़ियां कम से कम भागवत भक्त होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में पहले तीन मातृ कुल की महान भागवत नारियों का चरित्र है। उत्तरा भगवान को प्रार्थना करती है, द्रौपदी अति उदारता से अपने पुत्रों के हत्यारे को क्षमा करती है, और कुंती महारानी की प्रार्थना भगवान को अपने धाम द्वार का जाने से भी रोक लेती है। रथ के ऊपर से कूद के नीचे उतर आए कृष्ण, जा रहे थे अपने धाम। तो ये तीन महाभागवत नारियों के कुल में भगवत भक्ति होती है, तब परीक्षित जैसा महापुरुष पैदा होता है जिसके लिए भागवत का अवतार होता है। और पितृ कुल में भी भीष्म का कल हमने भगवत धाम जाना, भगवान के दर्शन करते हुए सुना। धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया, वो कथा आगे आती है, तीसरे स्कंद में भी आएगी, यहां भी है। विदुर धर्मराज है, मांडुक ऋषि के शराब से दासी पुत्र हुआ। कथा ऐसे आती है, कुछ चोर चोरी करके छुप गए मांडुक ऋषि के आश्रम में। राजा के सिपाही चोरों के साथ ऋषि को भी पकड़ के लाए। दंड तो दिया, सबको सूली पे चढ़ाया। जब मांडिक ऋषि को सूली के ऊपर चढ़ाया तो सूली उनके बस एक जरी सी सूली शरीर में घुसी और फिर सूली घुसे नहीं, ऊपर बैठे सब भागते हुए, महाराज महाराज आश्चर्य हुआ, सूली के ऊपर चढ़ाने के बाद भी इनको कुछ नहीं हो रहा है, बैठे हुए। राजा आया, प्रणाम किया, महाराज आप महात्मा हो, आप संत हो, हमसे अपराध हो गया, हमारे सिपाही आपको पकड़ के लाए, क्षमा करो। कहा महाराज आप, राजा आपका कोई दोष नहीं है। यमराज को पता नहीं लगता है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों पकड़ के लाए, सीधा यमलोक चला गया। यमराज को कहा बताओ मुझे क्यों राजा के सिपाही पकड़ के सूली के ऊपर चढ़ाने के लिए ले गए। यमराज ने कहा चित्रगुप्त देखो इसका खाता। चित्रगुप्त ने कहा जब ये छोटा एक डेढ़ साल का बच्चा था तो एक तिनका उठाया था, एक चुंटी को डाला था, तो इतना सा डाला था इसलिए इसको सूली इतनी डाली। मांडुक ऋषि कहते धर्मराज 5 साल का बच्चा कोई अपराध हो जाए तो उसका जिम्मेवार नहीं है तुम्हारा, पहले तो ये नेम बदलो। वैसे 12 साल तक भी बच्चे को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए, उसके माता पिता को उसका दंड देना चाहिए। पहले तो आपका विधान बंद कर, खत्म करो, और फिर धरती के ऊपर कौन पाप से बच सकता है, आप जाके देखो तो सही, धरती के ऊपर यमराज के पाप से बचना कितना मुश्किल है। तो धर्मराज तो ऋषि के सामने का महाराज एक तो राजा बनने का शाप मत देना, क्योंकि राजा पाप से बच ही नहीं सकता है, प्रजा के छठे से पाप का भाग राजा को भोगना पड़ता है, और दूसरा शूद्र के घर में जन्म नहीं देना, क्योंकि शूद्र को तो वो काम करना पड़ता है जो मालिक कहेगा तो पाप उससे हो ही जाएगा, और चंडाल के घर में तो जन्म देना ही नहीं, उसका काम ही चंडाल का है। क्रोध में ऋषि था बोला ये तीनों जन्म लेने पड़ेंगे आपको और फिर पाप से बच के दिखाओ। अब वो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज राजा बने, वो ही धर्मराज दासी पुत्र विदुर बने, व्यास के पुत्र है विदुर, धर्मराज है। उस वक्त धर्मराज की जगह पे अर्यमा नाम का पितृलोक का अधिपति यमराज का कार्य संभाल रहा था, उस जगह पे काम कर रहा था, और एक अन्य वाल्मीकि, रामायण वाले वाल्मीकि महाकवि नहीं, एक अन्य स्वपच चंडाल या धर्मराज बने। तीन एक समय धर्मराज तीन रूप में। अब यहां हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे पांडवों के पक्ष में भी भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर धर्म दिया, और भगवान तो निरपक्षपात तो करते ही नहीं है, समभाव होते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। कौरवों को भी विदुर धर्मराज दिया, दोनों को तो धर्मराज बराबर दिया कि नहीं दिया भगवान ने। पांडवों ने युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन किया, धर्म के ऊपर चले, तो भगवान पांडवों के संग में खड़े हो गए, और कौरवों ने विदुर का अपमान करके धर्म को धिक्कार दिया, इसलिए भगवान ने उसको छोड़ दिया। तो अब इसमें भगवान ने तो पक्षपात नहीं किया ना, एक दिन धृतराष्ट्र ने विदुर को मंगा के कहा कि अब मैं क्या करूं, दुर्योधन जिद कर रहा है, पांडवों को नहीं देना चाहता है। विदुर ने सत्य कहा, भाई सुनो महाराज, उंगली खराब हो और उंगली की खराबी के कारण शरीर सारे को दोष हो लगे तो उंगली को काट के फेंक देना चाहिए, शरीर को बचाना चाहिए। ऐसे आपका ये कुल घातक दुर्योधन, इसको आप अभी से निकाल दो नहीं तो कौरव कुल का विनाश कर देगा। उसी वक्त दुर्योधन अपने मामा शकुनी और भाई दुशासन और संग मित्र कर्ण के साथ प्रवेश किया, और उसने ये शब्द सुने और बहुत क्रोधित हो गए, कहे चाचा दासी पुत्र हमारा अन्न खाता है और पांडवों के गुण गाता है, तुम हमारे संबंधी नहीं होते तो तेरा गर्दन काट देते, निकलो जाओ। बड़ा अपमान किया, और धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था लेकिन कानों से भी बहरा हो गया, कुछ नहीं सुना। और विदुर तो धर्मराज था, उसने कहा भगवान ये अपमान भगवान मिला देगा, जिंदगी में अपमान भगवान मिलाता है। ध्रुव महाराज का अपमान करेगी सुरुचि तो भगवान की प्राप्ति हो गई। यहां विदुर का अपमान हुआ है तो भगवान की प्राप्ति होने जा रही है। वैसे इन सारे संसार के अंदर साधु संत को अपमान की कोई परवाह नहीं होता है। अपमान को अच्छा ही मानते, बहुत अच्छा मानते हैं अपमान को। वैसे भी हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान के सामने क्या कहते हैं, हम पापी हैं, हम खल हैं, हम कुटिल हैं, ऐसे ही कहते हैं कि नहीं। और जब कोई हमको कहते हैं पापी है, क्या बोलता है, हमको पापी बोलता है, तो झूठ बोल के है। अभी तो भगवान को कह रहा था मैं पापी हूं। अभी तो भगवान को कहा था मैं पापी हूं, मैं खल हूं, तो भगवान के सामने बोल रहा था हम तुमको कह रहे, तुम सुन नहीं रहे हो क्या। और जब कोई दूसरा कहा, बड़ा आश्चर्य लगता है ये बातें सुन के। सो बात ये करनी है हमको, विदुर ने धनुष दरवाजे के बाहर रख दिया, ये क्या बताया कि मैं अब दल नहीं बदलूंगा। कौरवों ने अपमान किया तो मैं पांडवों के पास नहीं जाऊंगा, मैं निरपेक्ष दोनों को छोड़ के भगवान का तीर्थ यात्रा पे चला जाऊंगा। और विदुर तीर्थ यात्रा पे चले गए। विदुर का घर कैसा था ये प्रश्न तीसरे स्कंद में पूछा गया, तो उसका उत्तर देते कहते विदुर का वो घर था जिसमें भगवान श्री कृष्ण बिन बुलाए चले आए थे, और विदुराणियों के केले के छिलके खाए, विदुर का जला हुआ साग खाया और विदुर की गोद में सर रख के सोए। ऐसे घर को विदुर कैसे छोड़ सकता है। लेकिन अपमान ने भगवान मिलाने के लिए विदुर को घर का परित्याग करा दिया, और विदुर सारे तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करने के बाद वृंदावन में जमुना जी के तट पे उद्धव से मिले। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के संदेश को, आज्ञा को, भगवान के स्वधाम जाने के बाद बद्री का आश्रम जा रहे थे। आज भी बद्री का आश्रम में नर नारायण के प्रतिनिधि उद्धव जी हैं। आज उधर उद्धव का विग्रह उधर स्थापित है। कभी भी नर नारायण भगवान नारायण को बाहर जाना होता है, बद्रीनाथ नहीं जाते हैं, उद्धव बाहर जाते हैं। उद्धव का मतलब ही होता है उत्सव, जहां जाए वहां उत्सव हो जाए। उद्धव और विदुर के मिलन का बहुत सुंदर चार अध्यायों में तीसरे स्कंद में वर्णन है। उद्धव के हृदय से कृष्ण लीला वृंदावन की मथुरा की द्वारा क्या की धारावाहिक समाधि में स्थित होने लगी। और तब विदुर को कहा, विदुर मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश अपने धाम जाने से पहले प्रभास क्षेत्र में दिया। उस जगह को कहते हैं ज्ञान वावा। वावा गुजराती में कुएं को बोलते हैं, ज्ञान का कुआं बोलते हैं। उस कुएं के किनारे के ऊपर बिठा के मेरे को ज्ञान दिया। अब तो विदुर ने कहा तो मुझे बताओ भगवान ने आपको क्या बताया। विदुर ने कहा ये बड़ा है, मुझसे धर्मराज है, अभी साप से आया है कोई बात नहीं, मेरे से आयु में भी बड़ा है, इन्होंने तो पांडवों की भी रक्षा की है, पांडवों के लिए पिता के समान थे ये, आंख जैसे पलकें जैसे आंख की रक्षा करती हैं, ऐसे ये पांडवों की रक्षा करते थे। और भगवान श्री कृष्ण इनको काका कहते थे, तो मैं उनको उपदेश दूं ये मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा। कहा विदुर जी जब मुझे भगवान उपदेश दे रहे थे ना, तब मैत्रेय ऋषि वहां आए थे, और मैत्रेय को मेरे सामने श्री कृष्ण ने कहा कि आप विदुर को उपदेश देना। अब ये सुन के विदुर के आंखों से धारावाहिक आंसू बहने लगे। अंत समय में भगवान का ने मेरा नाम लेके मुझको याद किया और मेरे लिए मैत्रेय ऋषि को उपदेश देने का आदेश दे के गए। अब दोनों ने कहा चलो चलते हैं गंगा जी के तट पे। मैत्रेय के पास विदुर ने जाके तीसरा और चौथा स्कंद भागवत का मैत्रेय विदुर संवाद है। दो स्कंद पूरे मैत्रेय जी विदुर को उपदेश दे रहे, और वहां से उद्धव तो बद्री का आश्रम चले गए। जैसे ही जन्म सार्थक हो गया, मैत्रेय के चरणों में बैठ के विदुर जी ने तत्व कृष्ण तत्व के ज्ञान को जान लिया, तो फिर चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जान। आपका जन्म भाग्य से भारत में हुआ है, जन्म सार्थक करी, पहले अपने जन्म को सार्थक करो। अजन्म सार्थक करने का मतलब है भगवान को प्राप्त कर लो। जन्म की सार्थकता यही है, नर का जन्म मिला है तो नारायण को प्राप्त करना चाहिए, अन्य किसी जूनी में यह संभव नहीं है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ ग्रंथ सब ग्रंथन गावा, मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। और फिर केवल जन्म सार्थक नहीं करो, कर पर उपकार। पर उपकार का मतलब है जिसको पराया हो उसको भी हाथ से पकड़ के उठा लो, उसका भला कर लो। विदुर ने किसका परोपकार करने का निश्चय किया? बोला मेरा भाई धृतराष्ट्र, उसका उपकार करो। जिसके घर से अपमानित होके निकले थे उसी का भला करने के लिए विदुर वापस आए हैं। इसलिए कहते हैं भगवान और के भगवान के भक्त किसी से द्वेष नहीं करते। जिस केकई ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, 14 वर्ष के बाद राम जी पहले केकई को प्रणाम करके फिर कौशल्या को कक्ष में जाते, तो विदुर जी वापस धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए हस्तिनापुर में आए। कल हमने कथा को यहां विराम दिया था कि धृतराष्ट्र की अनुमति लेके युधिष्ठिर महाराज इस पूरे भूमंडल पृथ्वी का, यहां पृथ्वी पूरी का नाम भारतवर्ष है, जितनी पृथ्वी खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई है ना, उसको हमारा वेद शास्त्र भारतवर्ष कहता है। ये पंडित जी बैठा है, जब पढ़ता है संकल्प तब कहता है भारतवर्षे भारत खंडे, तो उस भारत वर्ष में एक गंगा जमुनावर्ती जो टुकड़ा है इसको भारतखंड कहते हैं, इसको आर्यवर्त कहते हैं, लेकिन पूरी धरती का नाम भारत वर्ष है। इतिहास में जाके देखेंगे तो भगदत्त जो महाभारत में एक अक्षुण लेके सेना लेके कौरवों की तरफ से लड़ा था, वो चाइना से आया था, उसकी आंखें छोटी थी, वो चाइनीज था, चाइना की एक अक्षुण सेना लाया था। और मामा शल्य इराक से आए थे, ये पूरा मिडिल ईस्ट, ये पूरा यहां शल्य का राज था, और शल्य वहां से एक पूरी सैन्य अक्षौणी लेके आया था, और पांडु का महाराज पांडु का साला है शल्य। तो भारत की सीमा इतनी सीमित नहीं जितनी अब हम हमारे देखते देखते भूटान कहां चला गया, बर्मा कहां चला गया, बंगाल कहां चला गया, सिंध पुर कहां चला गया, ये तो देखते देखते सब हो गया है ना। तो भारत का कृष्णकालीन भारत तो बहुत, जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था तो कहां कहां तक उनका घोड़ा गया था, और रामचंद्र के तो समय में भारत की सीमाएं तो दक्षिण अफ्रीका तक थी, ये बहुत सब बहुत दूर दूर तक इसका चिन्ह मिलते हैं अभी तक। नहीं है ना, सिंगल प्लेट है ना, चिन्ह मिलता है सब जगह, आज भी चिन्ह मिलते हैं। ये तो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये इसका नाम ही श्री क्षेत्र था पांचों का, आज भी स्वर्ण भूमि कहते हैं। और उस देश के एयरपोर्ट के ऊपर समुद्र मंथन का बहुत बड़ा एक बना हुआ है, डायरामा कहते हैं, बड़ा एक मूर्ति बना हुआ, और हर रोड का नाम राम एक राम दो राम तीन है, हर चौराहे के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। तो भारत की सीमा इतनी छोटी नहीं थी। तो जैसे ही धृत महाराज युधिष्ठिर भारत वर्ष के एक क्षत्र राजा हुए, तो उस वक्त विदुर जी आए तो बड़ी प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर ने कहा हमारे प्राण वापस मृतक शरीर में जैसे प्राण आते हैं ऐसे हमको प्रसन्नता हुई, काका आपने हमका बचपन से हमारी रक्षा की है। कहां कहां गए विदुर, बहुत रोज सुबह कथा करता था सब तीर्थों की, और रात को जाके धृतराष्ट्र को कहता था तुम्हारे 100 पुत्रों को मारने वाला ये भीम, और इस भीम के टुकड़ों के ऊपर तुम पल रहे हो जैसे कुत्ते को कोई टुकड़ा देता है, तुम्हें भगवान की ध्यान करने का विचार नहीं आता। यहां लिखा है कि साधु संत मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, जगाने के लिए होते हैं। माया की नींद में सोए हुए लोगों को जगाने के लिए साधु चूंटी मारता है ताकि जग जाए। धृतराष्ट्र को जगाने के लिए जब विदुर ने कहा, उसने बोला मैं सूरदास हूं, कैसे चलूं, आंखें नहीं है। बोला मैं तेरी आंखें हूं, तुम्हारे राज में मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री रहा राज में, तो आज तुम्हारे को भगवत धाम के रास्ते में आगे मैं चलता हूं, तुम मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख। और आधी रात को विदुर के कंधे के ऊपर हाथ रखा। धृतराष्ट्र ने गंधारी ने कहा, जिस दिन मैंने सुना था कि आप देख नहीं सकते, मैंने पट्टी बांध दी थी, मैं पतवरता हूं, मैं आप। और उन्होंने कंधे के ऊपर धृतराष्ट्र के हाथ रखा और तीनों चल दिए। सुबह तो महाराज युधिष्ठिर, काका कहां चले गए, महाराज कहां चले गए, विदुर नहीं है, धृतराष्ट्र नहीं है, चारों ओर ढूंढने लगे। संजय कहां गए आप, धृतराष्ट्र महाराज आज तो मुझे भी नहीं बताया। उस वक्त नारद ने आके कहा, महाराज युधिष्ठिर आप ढूंढने का प्रयास मत करो, वो उत्तर दिशा में चले हैं, उत्तराखंड में। आज से 5 दिन के बाद योग अग्नि से धृतराष्ट्र अपने शरीर को त्याग करेगा और सती गंधारी उसमें प्रवेश करेगी और विदुर भी अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्याग देंगे। समय बड़ा बलवान है महाराज, आप भी ऐसे मत समझो कि सारी उम्र यहां रहोगे, सावधान करके चला गया नारद। और यहां धृतराष्ट्र के सदगति की बात है, उसके बाद परीक्षित महाराज का प्रकट्य का वर्णन है। हमने 2 अध्याय तो आपको बताए नहीं, सिर्फ इतना कहा कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकले और वहां से उनकी विदाई हुई और द्वारका में उनका स्वागत हुआ। ये अपने आप में बहुत सुंदर है। अब भागवत नित्य पढ़ने का नियम बना लो। हम आज कह रहे थे हमारे मित्र ब्रजभूमि को कि हम कथा करते हैं, हमारा कथा करने का उद्देश्य होता है, और हमारा उद्देश्य नहीं होता है, भागवत के दूसरे स्कंद में अभी आपको बताएंगे। व्यास देव और ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं कि बेटा जो मैंने आपको भागवत सुनाई है इसका विस्तार करो, लेकिन प्रचार तुमको करना है तो एक संकल्प ले लो कि लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति जगाओगे, कृष्ण के निकट लाओगे, और कोई तुम्हारे प्रचार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये भागवत के प्रचारकों के लिए ब्रह्मा जी ने नारद से संकल्प कराया है। तो हमारी हम कह रहे थे हमारे मित्र ब्रजभूमि से कि ये 7 दिन की कथा के बाद आप कम से कम एकादशी को महीने में 2 बार छोटा सा सत्संग यहां शुरू करके जो श्रद्धालुओं के हृदय में ये बीज भक्ति का जागृत हो रहा है, उनका जल देना पोषण करना ये आपका धर्म है। आप इसका ये सेवा आगे करते रहना, प्रसाद मंदिर से पका के लेके आगे जो आप भाग्यशाली बैठ के हरी कथा सुनना चाहेंगे, जो बीच बीच में हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, 7 दिन में कहां पूरे होंगे, 335 अध्याय है, तो बाद में प्रेम से इन कथा का श्रवण आप धारावाहिक चलता रहे, 15 दिवस चले, महीने महीने चलाओ, साप्ताहिक चलाओ, लेकिन घरों में एक एक मोहल्ले में एक कथा का आयोजन होना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति के बगैर मानव जन्म व्यर्थ चला जा रहा है, कोड़ी बदले जा रहा है। ये हीरे जैसा मानव जन्म है जिसमें भगवान की प्राप्ति संभव है, हम संसार की प्राप्ति के पीछे लगते हैं। आज तक संसार किसी को मिला नहीं है, संसार के हम होते तो संसार हमको मिलता, हम हैं भगवान के, वो हमको मिलेगा। ये मन दिया भगवान ने तो ये भगवान में लगेगा, संसार में लग ही नहीं सकता है, इसलिए मन इधर से उधर रोज भागता रहता है। सो इसके बाद परीक्षित महाराज का जन्म होता है, और परीक्षित महाराज के जन्म के समय बहुत महाराज युधिष्ठिर ने दान पुण्य किया है, पंडितों ने उसके उत्तम गुणों का वर्णन किया है, वो भी अद्भुत गुण है, लेकिन कहा एक समय में ब्राह्मण का श्राप होगा, इसको चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और परीक्षित का नाम परीक्षित कैसे हो गया, ये कथा कहने का मन करता है। परीक्षित एक दूसरी बात भी कहने का मन करता है कि महाभारत में कथा भी है और भागवत में भी कथा, ये एक जैसी है लेकिन दोनों में अंतर है। भागवत में कथा है कि परीक्षित को भगवान ने माता उत्तरा के उदर में ही रक्षा कर ली और परीक्षित ने भगवान का दर्शन कर लिया। महाभारत में है कि उत्तरा को ब्रह्मास्त्र से झुसा हुआ जला हुआ बालक पैदा हुआ, शरीर में प्राण नहीं थे। भगवान कृष्ण सूत की ग्रह में चले गए और उसी खटिया के उसी पलंग के ऊपर बैठे और उतरा ने वो बच्चा भगवान श्री कृष्ण की गोद में दिया। भगवान ने बच्चे को लेके घोषणा की कि कौरव पांडव के युद्ध में मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया हो तो इस बच्चा ये वापस जीवित हो जाए। और बच्चे के अंदर प्राण का संचार हुआ और पहली आंखें खोली तो कृष्ण को देखा। क्योंकि एक कल्प का भेद है भागवत और महाभारत की कथा में, इसलिए स्थान का अंतर है, थोड़ी लीलाओं में भी। तो भगवान का दर्शन किया था इसलिए परीक्षित सबको ऐसे परीक्षा लेता था, ये कौन है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने तीन बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों के अंदर भगवान श्री कृष्ण आए तो एक यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। छोटा सा बालक परीक्षित महाराज युधिष्ठिर जी गोद से उतरा और सबको देखता देखा कृष्ण के सामने आया तो खड़ा होके ऐसे देख रहा है फिर थोड़ी शंका कर रहा है। तो व्यास देव उठ के कहा, हे श्री कृष्ण, ये बालक सबको ढूंढ रहा था, आज आपको पहचान लिया है। बस एक संदेह है, जब माता के उदर में आप प्रवेश किया था आपके चतुर्भुज था, अब आपके दो भुजाएं हैं, इसको चार हाथ दिखा दीजिए, इसका संशय का आप समाधान कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण उठ के चतुर्भुज हो गए और परीक्षित उसके बाद किसी की परीक्षा नहीं ली, भगवान को देख लिया कि इसी ने मेरी रक्षा की थी, तो भाग्यशाली परीक्षित है। इसके बाद पांडवों का राज त्यागने का वर्णन आता है। अर्जुन चले गए थे द्वारका भगवान श्री कृष्ण के आगे क्या हमारी सेवा है पूछने के लिए, और पीछे महाराज युधिष्ठिर को बहुत सारे अपशकुन होने लगे। नहीं तो महाराज युधिष्ठिर के राज की इतनी सुंदर व्यवस्था थी और 5000 रसोइये हस्तनापुर में भोजन बनाते थे, अतिथि आते जाते को भोजन मिलना चाहिए, कोई भी हस्तनापुर में आए तो भोजन की व्यवस्था। ये होटल निकला, ये भारत की संस्कृति नहीं है। अतिथि देवो भव जहां होता है वहां कोई भोजन बिकता है क्या? ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, दूध बिकना भारत की संस्कृति नहीं था। दूध और पूत को तो रतन माना जाता था, कौन उसको बेचता था? अरे हमने हमारे जीवन में देखा है, कोई दूध बेचता था तो छुपा के बोरी में ले जाता था, कोई देख न लेके दूध बेच रहा। दूध को बेचना, अभी तो पूत भी बेच रहे, अभी तो बेटे भी बेच रहे हैं लोग, दूध बेचना पूत बेचना इसको बहुत बड़ा निंदित कार्य माना जाता था। महाराज युधिष्ठिर के राज में सब सुविधाएं थी, आनंद था। यहां एक और बात कहने का मन ये करता है कि दुर्योधन के राज में कौन सी कमी थी? भीष्म जैसा जिसके पास सेनापति हो, द्रोणाचार्य जैसा गुरु हो, कृपा जैसा आचार्य जैसा गुरु हो, और जिसके अपने कंधे के ऊपर लक्ष्मी का निवास हो, बलराम जी जिसका गुरु हो, उसमें कोई कमी थी क्या? उसके राज में कोई कमी थी नहीं, बस एक कमी थी, कृष्ण का द्वेषी था। और कृष्ण नहीं, कृष्ण के भक्तों का द्वेषी था, पांडवों का द्वेषी था। भगवान अपने द्वेष को तो भूल जाते हैं लेकिन भक्तों के द्वेष करने वाले को कभी नहीं भूलते। अपने अपमान को नहीं लेते हैं लेकिन भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं देख सकते। एक ही त्रुटि थी दुर्योधन के राज में कि भगवान और भगवान के भक्तों का द्वेषी था, बाकी किसी उसके राज में किसी चीज के। और भगवान ये जानते थे इसलिए महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया और भोजन परोसने का सेवा भीम को दिया बोला ये जितना खुद खाता है उतना सबको देगा, ऐसे कोई दोबारा न मांगे। भोजन करने के लिए बच्चे किसी को दे तो वो तो चम्मच से देगा, कब कब तक हमको पूरा करेगा? देखे खिलाने वाले का तो दिल होना चाहिए भीम जैसे देव। और भगवान श्री कृष्ण को जब पूछा आप क्या सेवा करेंगे, बोला आने वालों के सारे चप्पलों की व्यवस्था करूंगा, भोजन करेंगे संत के पत्तल उठवाने की सेवा करूंगा। और भगवान के तो अपने भाई के यज्ञ में ये सेवा लेनी थी कि साधु के चरण सेवा और साधु के पत्तल उठाने की सेवा का भगवान ने कार्य ले लिया था। तो बात कर रहे थे क्यों भगवान ने उसको कोषाध्यक्ष बनाया, बोला ये खर्चा करेगा ज्यादा ताकि कमी पड़ जाए, लेकिन इसको मालूम नहीं है इसके कंधे के ऊपर लक्ष्मी है, जितना ये खर्चा करेगा उतना धन बढ़ेगा, तो इसमें युधिष्ठिर की महिमा बढ़ेगी। तो भगवान ने ये काम दुर्योधन से कराया। तो यहां बात ये कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज के राज में किसी चीज की कमी नहीं थी। अब सब जगह होने लगे, भीम से कहने लगे भैया आज गैया के आंखों में आंसू है, कुत्ते भौंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो लगता है कुछ अनहोनी हो गई है। तब तक तो अर्जुन बड़े दुखी होके आए, बाल बिखरे हुए थे, मुकुट सर के ऊपर था ही नहीं। और महाराज युधिष्ठिर चिंतित होके पूछा भैया तुम्हें क्या हो गया, जो दुख के कारण, क्या तुम ब्राह्मण को दान नहीं दे पाए, क्या तुम अपने से किसी कमजोर से हार गए हो इसलिए दुखी हो? बहुत से जो कारण दुख के होते हैं वो पूछे और अंत में डरते डरते कहा द्वारका में तो सब सुख है ना, हमारे परम हितेशी भगवान श्री। ये कह सुनते ही अर्जुन कहता है किसकी बात कर रहे हो, जिसकी कृपा से मैं स्वयंवर में मथली का भेजन कर सका, जिसकी कृपा से इस महासंग्राम में भीष्म द्रोण को धराशायी करने में समर्थ रहा, आज वो कृष्ण हमको छोड़ के चले गए हैं। ये इतना सुना तब महाराज युधिष्ठिर ने अपना मुकुट नीचे रखा कि कृष्ण चले गए तो उनका राज दिया हुआ था, राज किया, अब हम राज नहीं करेंगे। भीमसेन ने कहा भाई आप राज नहीं करेंगे तो राज हम भी नहीं करेंगे। और तुम नकुल सहदेव ने भी मुकुट नीचे रख दिया। और ये समाचार कुंती को मिला महल के अंदर कि अर्जुन पहले मेरे चरण छूने के बाद सभा में जाते हैं, आज यहां क्यों नहीं आए? कहा अर्जुन ने कहा द्वारका में यदुवंश 56 करोड़ यदुवंश भगवान ने सबका ब्राह्मण शराब से संहार कराया और स्वयं भगवान स्वधाम चले गए, बलराम जी पाताल में चले गए। कुंती स्वधाम सुना और प्राण निकल गए, मदगत प्राणा, ये भगवत गीता का श्लोक है। मेरे भक्त अगर ये सुन ले कि मैं उनकी स्मृति में नहीं हूं तो उनका प्राण निकल जाएगा। नंद बाबा कहेंगे एक दिन मथुरा से जब लौटेंगे और कृष्ण बलराम साथ नहीं आते हैं तो कहते हैं एक ही पिता धरती पे हुआ है दशरथ महाराज, राम के ना आने का सुना प्राण निकल गए, हम कैसे पिता हैं कि कन्हैया लौट के नहीं आया और हम जीवित आ गए, हमको धिक्कार है, एक ही पिता हुआ है महाराज दशरथ। जैसे ही सुमंत्र ने कहा कि राम जी गंगा को पार करके आगे चले गए और यही संदेश दिया है कि सब रानियों के साथ संभावना से आप उनका प्रेम से कहा जाए शब्द भाव ये है कि केकई के प्रति द्वेष भाव नहीं रखने का, हम तत्काल वापस आ जाएंगे। और सुमंत्र जब ये कहा कि लक्ष्मण ने जो मुझे कहा था, राम जी ने अपना शपथ दिया है कि पिता को मत बताना, लेकिन आप महाराज हमारे राजा हैं, मैं आपको तो ना नहीं कह सकता। दशरथ ने कहा मत बताना, राम जी ने शपथ दिया है तो राम जी का शपथ मत तोड़ना, मैं जानता हूं कि लक्ष्मण ने क्या कहा होगा, लक्ष्मण ने यही कहा होगा कि उस बूढ़े पिता को कहना कि मेरा बस चलता तो तेरे को बंदी बनाता, नहीं तो गर्दन काट के राम को राज तिलक देता, और यही कहा है ना, अगर ये कहा है तो अब मैं निश्चित होकर मर सकता हूं, जिसके साथ ऐसा भाई होगा उस राम को कोई संकट नहीं आएगा। दशरथ को यह विश्वास हो जाता है जब ये संदेश सुनता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, एक कुंती महारानी ऐसी है, कृष्ण के स्वधाम जाने का सुना तो प्राण निकल गए है, अब छोटे परीक्षित को राज तिलक देने की योजना बनी है। एक तरफ पांच भाई पांचों पांडव राज करने को तैयार नहीं है, इसलिए महाभारत को पढ़ो या रामायण को पढ़ो, भाइयों के प्राण प्रेम कैसा है, ये मुट्ठी की तरह बंधे हुए। एक ने कहा राज नहीं करूंगा तो दूसरे चार ने कहा मैं राज नहीं करूंगा। राम ने कहा कि मैं सरयू, अगर लक्ष्मण को त्यागना पड़ रहा है तो फिर मैं नहीं रहूंगा। तो उस वक्त तो एकदम भरत ने कहा भैया मुझे राज करने के लिए मत कहना। शत्रुघ्न को मथुरा से जल्दी बुलाया और शत्रुघ्न को पता लगा, कहा भैया आज तक हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, हमको राज करने के लिए मत कहना, हम आपके साथ चलेंगे। एक भाई भी अलग राज करने को तैयार नहीं। तब हर एक भाई के दो दो पुत्र थे, उसको पूरा ये भारतवर्ष बांट के दे दिया, ये सारा ऐसे बांट के दे दिया। लेकिन चारों भाइयों ने एक दूसरे से अलग होना चाहा नहीं, और न पांच पांडवों ने कभी एक दूसरे से अलग होने का विचार किया। ये दोनों इतिहास भारत के भाइयों के प्रेम को कितना संगठित किया है, ये केवल समझ में आ जाए तो हमारे घरों के अंदर वैकुंठ का वातावरण हो जाए। अद्भुत ये शास्त्र हैं, इनकी मर्यादाओं को समझना। असल में 1000 साल तक इस देश के ऊपर विदेशियों का शासन रहा, 2 साल तक तो अंग्रेज ने जो कुछ बिगाड़ना था वो हमारे सारी संस्कृति के धजिया उड़ाई। लेकिन धन्यवाद है उन संतों साधुओं को जो पेड़ों के नीचे बैठकर इस रामायण की कथा से और इस भागवत की कथा से हमारे हमारे संस्कारों का सुरक्षा करने का बेड़ा उठाया था। कथा करते हुए कहते हैं कि स्त्री तो सती सीता जैसी होनी चाहिए, राज हो या वनवास हो पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो घर के अंदर थोड़ा भी झगड़ा होता था तो कहते नहीं, ऐसी पतिव्रता स्त्री होती है। भाइयों में झगड़ा होता था, अरे भाई तो भरत जैसा होना चाहिए, राज को त्रांजलि देती और राम की तरह धरती पे राम सोता है तो 2 फीट नीचे नंदीग्राम में सोने लगा। इन कथाओं ने इस भारतवर्ष की संस्कृति को सुरक्षित रखा। हमारे को किसी ने एक बार देखा तो कहा कि भारी भरकम महाराज आप करते क्या हो? हमने बोला भगवान का भजन करते हैं। बोला महाराज क्या भगवान का भजन करते हो, आते जाते जहां जाते हो मुफ्त का खाते हो फिरते हो, काम तो कोई करते नहीं। तो हमने उनसे प्रश्न पूछा, ये कर्नल साहब बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूं, कोई व्यक्ति आर्मी में भर्ती होता है, 20 साल के बाद रिटायर होता है, एक भी युद्ध नहीं होता है, तो क्या गवर्नमेंट मुफ्त का उसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है क्या? ऐसे कई हैं जिन्होंने युद्ध एक भी नहीं लड़ा, भर्ती हुए रिटायर भी हुए युद्ध लड़े ही नहीं।
तो फोर्स होने के कारण ही तो युद्ध नहीं होता है।
नहीं, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि लड़े नहीं लेकिन इतना बड़ा खर्चा गवर्नमेंट का बेकार में किया क्या उसके ऊपर? तब कहते नहीं। क्यों? बोला जब सीमा के ऊपर संकट आता है तो सीने पे गोली वो खाते हैं, हम घर में आराम से सोते हैं। तब हमने कहा जब सीने के ऊपर गोली खा के तुम्हारी सीमा की सुरक्षा वो करते हैं तो तेरे संस्कारों की सुरक्षा ये साधु संत करते हैं। ये तुमको जो कह रहे हो कि इनको भोजन खिला रहे हो, ये तुम्हारे संस्कारों की सुरक्षा करते हैं। तुम्हारे घर के अंदर कैसा संगठन परिवार होना चाहिए, कैसी मर्यादा होनी चाहिए, ये तो इन्होंने बचा के रखा है, नहीं तो कब से इसकी धज्जियां उड़ गई होती। नहीं तो दुनिया की और सभ्यताओं के नाम निशान मिट गए लेकिन यहाँ की सभ्यता इतनी भारी भरकम है कि अभी तक वो हिल नहीं पाई। 12 साल तक हिलाने वाले हिल गए लेकिन ये नहीं हिल पाई। तो इसके बाद परीक्षित के राजा होने का वर्णन है। उत्तर कुमार की बहन, उत्तर कुमारी की पुत्री के साथ महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। उसको कहा था तुम्हारा पति तो बड़ा चक्रवर्ती होगा लेकिन एक समय एक दिशा में मृगिया करने जाएगा, शिकार पे जाने की मना कर देना, अगर जाए भी तो कहे कि किसी संत का अपमान न करे। लेकिन समय ऐसा आया कि महाराज परीक्षित, एक बात पहले दिन आपको बताई थी कि जब उद्धव जी भागवत की कथा कर रहे थे उस वक्त परीक्षित महाराज को हस्तनापुर से तत्काल बुलाया गया राजकीय कार्य को संगठित करने के लिए। तो महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकल गए। दिग्विजय का मतलब 10 दिशाओं के अंदर, दिग कहते हैं दिशाओं को। महाराज दशरथ को दशरथ इसलिए कहते हैं कि 10 दिशाओं में जिसके रथ को कोई नहीं रोकता था, वो आकाश में भी जा सकते थे, पाताल में भी जा सकते थे, उनके रथ 10 दिशाओं में चल सकता था, इसलिए दशरथ कहते थे। और 10 इंद्रियों के ऊपर भी संयम था, ये उसका दूसरा भाव है। ऐसे दिग्विजय का मतलब अंग्रेजी में तो 4 ही दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व, लेकिन हमारी भारतीय दिशाओं को 10 दिशाएं बोलते हैं। 4 दिशाएं 4 कोने ऊपर और नीचे। ऋतुएं कितनी है भारतवर्ष में? 6 ऋतु है। लोगों को तो 4 का नाम मुश्किल से आएगा। हर 2 महीने की 1 ऋतु है। हर ऋतु का उत्सव अलग है, हर ऋतु का वस्त्र अलग है, हर ऋतु का भोजन अलग है। ये अगर समझ में आ जाए तो लोग बहुत सुखी हो जाएं, बीमार भी नहीं पड़े, इसके अपने नेम है। अभी तिल खाने के दिन आ रहे हैं, सर्दी आएगी ना, इसमें तिल आएगा। ये तिल की आपको जगह जगह चिक्कियां बनी हुई मिलेगी, ये इस ऋतु का 2 महीने चलेगा ये। तो ये ऋतुओं के नाम, आपके पढ़े लिखे बच्चे जो अच्छी तरह से अंग्रेज मीडियम में घिटमिट करते हैं, पहले हमारे को कहते थे कि सामान्य भारतीय हिंदी बोलता था, जब कोई पी के मूर्ख अंग्रेजी बोलता था, जब कोई पीता था तो। अब तो सारे ही पिए हुए दिख रहे हैं अंग्रेजी बोल, कोई सीधा नहीं दिख रहा। एक भी बच्चे को बोलो कि 12 महीनों के नाम बता दे, ये कौन सा महीना चल रहा है, आगे वाला महीना कौन सा है, श्रावण भाद्र आशु ये कार्तिक ये नाम बता दे, तो मैं उस बच्चे को बहुत बड़ा पुरस्कार दे दूंगा। और 6 ऋतुओं का नाम बता दे, 7 दिनों के नाम भी नहीं आएगा, संडे मंडे बोल देगा, लेकिन बृहस्पतिवार कहने में उसके पास बुद्धि नहीं है, तो बृहस्पतिवार कहां से कहेगा, और बुद्धि के दाता कोई निकाल दिया घर से। तो इस पढ़ाई ने असल में आप देख लो, अरे माता को कोई माता नहीं कहता है, पिता को कोई पिता नहीं कहता है, पिता को डेड कहते हैं, मतलब मरा हुआ है, उनके लिए तो बचपन से ही जैसे मर गया। और मम्मी कहते हैं, मम्मी किसको कहते हैं, जो मर जाए उसको बर्फ में रख देते हैं ना, सूखी पड़ी रहे, किसी काम की ना हो, उसको मम्मी कहते हैं। ये मम्मी और डैडी। और पहले घर से जाते थे तो पिता को प्रणाम करते, माता को प्रणाम करके आशीर्वाद का कवच पहन के जाते थे। अभी दूर से ही बाय, मतलब बाय का मतलब आग लगे तेरे घर को मैं जा रहा हूं, इसका मतलब ये, क्या संस्कारों का सत्यानाश हुआ। हम कहते हमने बहुत बड़ी प्रगति की है, खाक प्रगति की है, तुम जाके अपने घर में देखो, तुम्हारे दादे चांदी के बर्तन में खाते थे, चांदी के लोटे और थाली अभी हर एक के घर में पड़ी होगी, गरीब के घर में भी चांदी में खाने वाले, चांदी को छोड़ा कांसा आया, पीतल आया, तांबा आया, लोहा आया, लोहा भी चला गया, प्लास्टिक नहीं पहले तो आया, ये मिट्टी की प्लेटें, चीनी की आई वो भी गई, गत्थे की प्लेटें आई, अब प्लास्टिक में खा रहे हैं। बोले हम बहुत बड़ा प्रगति किया, खाक प्रगति किया है, चांदी में खाने वाले पत्तल में खाते तो संत बनते, ये तो गत्थे में खा रहे हैं। कोई संस्कृति का प्रगति नहीं हुआ, बहुत बड़ी अधोगति हुई है। बच्चा मेरा अमेरिका पढ़ रहा है, तेरा बच्चा अमेरिका पढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारे को तो यहां पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है ना। एक माता जी कह रही थी, मेरी लड़की को मैंने विवाह अमेरिका में कराया है, अभी सुखी रहेगी। दूसरी गांव की बिचारी थी, बोला उधर उसके घर में पोचा वाली आएगी? बोला पोचा वाली तो नहीं आती है, कपड़े धोने वाली आती है? वो तो नहीं आती है। बाथरूम साफ करने वाली मैत्रानी आती है? वो नहीं आती है। बोला तेरी बेटी क्या सुखी होगी, अपना बाथरूम भी साफ करेगी, पोचा भी देगी, कपड़ा भी देगी, रोटी भी करेगी, अरे इससे तो मेरी बच्ची अच्छी है, 4-4 घर में काम करने वाले तो है, और उधर किसी के घर में नहीं है, किसी एक के घर में नहीं। हम तो दुनिया को जाके देख लिया ना, किसी के घर में नहीं, सबको खुद कर, ये भारतवासी के घर में 4-4 काम वाले आपके घर में बैठे दिखते। अब इसे ये सुख है कि वो सुख है, समझ में आ रहा है कुछ किसी को? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कीर्तन करो।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hey!
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरि ओम। सो महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए गए तो एक जगह आश्चर्य लगा, एक दुबली पतली गाय आंखों से आंसू बहा रही है और एक पांव के ऊपर लड़कता हुआ बैल, उन दोनों के बीच में कोई वार्तालाप हो रहा है और उनके पीछे एक राजा का वेश धारण किया हुआ दुष्ट डंडा हाथ में लेके बैल के टांग को मार रहा है। महाराज परीक्षित की पहली मानता भगवान का दर्शन जन्म से पहले किया। विष्णु रात नाम था उसका, जिसकी विष्णु ने रक्षा की और उनकी कथा सुनाने के लिए ब्रह्म रात ब्रह्म में रत सुखदेव महाराज पधारे। और यहां हरे कृष्ण हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और दूसरी विशेषता महाराज परीक्षित की यह है कि वो गाय और बैल की भाषा को समझ गए। बैल पूछ रहा था गाय से कि तुम दुखी क्यों है, क्या तुम्हारे बच्चों को लोग मार के खा जाते हैं, उनको दूध नहीं पीने देते। और गैया कह रही थी तुम्हारी तीन टांगे किसने तोड़ी है। और महाराज परीक्षित आश्चर्य से देखा और ये कौन थे दोनों, पृथ्वी गाय का रूप धारण किया था और धर्म बैल का रूप धारण करके खड़ा हुआ था और जिसके तीन पांव पहले से टूटे थे एक पांव के लड़खड़ा रहा था और पीछे दुष्ट के रूप में राजा का वेश धारण किया हुआ उस धर्म रूपी बैल को ध्वल धर्म रूपी बैल को ताड़त कर रहा था पीड़ित कर रहा था। महाराज ने तलवार निकाल के कहा दुष्ट तुम क्या समझते हो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह इस धरती से चले गए हैं, पांडवों के राज के अधिकारी के राज में तुम इतना दुष्टता कर सकते हो, गाय जिसकी रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना हम क्षत्रियो का धर्म है। और उसने राजा का वेश उतार के कहा महाराज मैं कलयुग हूं, मैं आपके शरण में आया हूं, पहले तो मेरे को जीवन दान दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित की तीसरी महानता यह है कि काल के ऊपर विजय प्राप्त की, कलयुग को झुका दिया और कलयुग ने महाराज परीक्षित का शरण ले लिया। पृथ्वी दुखी कब होती है, जब झूठे लोग इस धरती के ऊपर दुष्ट लोग होते हैं, गाय की हत्या होती है तो कहा तो बड़ा बहुत दुख होता है। और धर्म तब ये पूछा गया, कलयुग ने कहा मुझे कोई स्थान दीजिए महाराज रहने के लिए। महाराज ने चार स्थान कलयुग को रहने के लिए दिया, सुरापान जहां नशा होता है, सोनो जहां पशु हत्या होती है, द्वित जहां क्रीड़ा होती है और विभचार जहां पर स्त्री पर पुरुष में संबंध होता है, जहां इन चार स्थानों में रहो ये कलयुग के कार्य हैं, ये पाप के कार्य हैं। कलयुग ने कहा महाराज ऐसी जगहों के ऊपर आपके भय से कोई नहीं आएगा, कोई स्थान और दे दीजिए। महाराज ने कहा स्वर्ण में निवास करो, स्वर्ण का मतलब धन, जिसका जो धर्म से नहीं कमाया हुआ हो उसमें जाके निवास करो। तो यहां प्रश्न ये उठता है कि ये चार चीजें, तब कहते हैं धर्म चार स्तंभों के ऊपर खड़ा होता है, ये बनाया है पंडाल तो इसमें खंभे है इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो धर्म चार स्तंभ के ऊपर खड़ा होता है। धर्म के चार स्पंद स्तंभ का नाम है सत्य दया तपस्या और पवित्रता, ये चार धर्म के स्तंभ है। और हर एक स्तंभ का विध्वंस होता है एक पाप कर्म से जो कलयुग का प्रभाव है, पशु हत्या से दया का स्तंभ ध्वंस होता है, नशा करने से तपस्या को तिलांजलि दी जाती है, नहीं करता है कोई तपस्या, सत्य का स्तंभ का विनाश जुआ करती है, द्युत करने वाला जुआरी सत्य नहीं बोलता, और व्यभिचार पर स्त्री पर पुरुष का संबंध पवित्रता का विनाश करता। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में महाराज अमेरिका के अंदर जाके कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मैं इनको कहूंगा कि इन चार कलयुग के पापों से बचो, कौन मानेगा? और फिर कहूंगा माला लेके हाथ में हरे कृष्ण मंत्र दो घंटे कम से कम जपो। वैसे तो 24 घंटे में 8 घंटे आपके शरीर के लिए दिए हैं, सो के आराम करो, नहाओ धो खाओ पियो, 8 घंटे आपको दिए हैं कमाओ घर परिवार चलाओ, लेकिन 8 घंटे आत्मा के चिंतन के लिए है। 24 घंटों का विभाजन ऐसे किया है हमारे वेद ने, अभी भी सोने के 8 घंटे सबने चला रहे, खाने पीने का धंधे वाले भी 8 घंटे सब चल रहे, बाकी जो भगवान के भजन वाले आत्मा वाले 8 घंटे है वो कौन ले गया? ये सबसे बड़ा चोर है जो आपका ये टाइम ले जाता है, जो आपका अपना टाइम था। दो तो दो शरीर के टाइम है, एक शरीर को चलाने के लिए कमाना पड़ेगा, नहीं तो घर में पकाना सफाई करनी, ये तो आपका कार्य है, ये तो शरीर का है, लेकिन आत्मा के चिंतन के 8 घंटे कहां गए? अच्छी तरह से देख लो, पहले 8 घंटे लोग साधन भजन करते थे, लेकिन महाप्रभुपाद ने कहा इतने 8 घंटे तो होंगे नहीं, 2 घंटे तो कम से कम रोज भगवान का भजन करने का नियम बनाओ। बहुत बड़ा दुख होता है असल में कि लोगों ने अपना भला ही कर, अपना भला ही नहीं समझ पा रहे क्या है लोगों का, सब व्यवस्थाएं उल्टी हो गई है। ईमानदार कोई ऑफिसर आ जाए तो कहेंगे फंस गए, न लेता है न काम करता है, और कोई बदमाश पहले नंबर का आ जाए कोई बात नहीं दो करो, आप भी खाओ उसको भी खिलाने दो, हमने उल्टी रीतों को सही समझ लिया, अधर्म हो रहा है। तो श्री प्रभुपाद ने कहा ये कैसे मानेंगे उन लोगों को जब ये बातें कही कि ये तो अधर्म है, इसके तो बचना ही चाहिए, अधर्म से नहीं बचे तो धर्म के ऊपर चल कैसे पाएंगे? तो ये चार नियम संस्था के सारे भक्त पालन करते, कोई नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना। तो यहां परीक्षित महाराज कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करके वापस आते हैं। एक दिन की बात है, जा रहे थे मृगया करने, अपने सारे साथियों से अलग हो गए प्यासे, सम्यक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, ऋषि समाधि में थे, महाराज का स्वागत नहीं हुआ, महाराज ने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया और महाराज वहां से वापस लौट रहे थे। एकदम पश्चाताप हुआ, मैं क्या अनर्थ कर दिया, क्या हो गया था मुझे, ब्राह्मण का मैं अपमान कर दिया, भगवान मेरा कुल नाश ना हो, मुझे जो चाहे वो दंड मिल जाए, अपने आप पश्चाताप कर रहे थे। उस वक्त कुछ बच्चे खड़े थे, वो भागते हुए गए, सम्यक ऋषि का बेटा क्या नाम है, ऋषि श्रृंगी, श्रृंगी को कहा हे तेरे पिता के गले में महाराज मरा हुआ सर्प डाल के गया। उस बच्चे ने न सोचा न समझा, जल उठाया, अंजलि में कहा जिन राजाओं का अभिषेक करते ब्राह्मण राज तिलक देते हैं, वो अगर ब्राह्मणों का अपमान करते हैं तो आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डंक से महाराज का शरीर छूट जाए। और फिर भागता हुआ आया और रो रहा था तो सम्यक ऋषि ने कहा बेटा रो क्यों रहे, तो तुम्हें किसी ने अपमान किया? बोला मेरा अपमान नहीं, आपके गले में मरा हुआ सर्प है। ऋषि ने कहा कोई माला डाले या सर्प डाले हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो सब समान है। बोला नहीं महाराज, आपके मले गले में महाराज डाल के गए हैं, मैंने उनको शराब भी दे दिया 7 दिन में मरने का। बोला बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा राजा धरती को फिर मिलेगा नहीं, तुम्हारा ये काम निंदनीय है। और ऋषि ने एकदम अपने एक ब्रह्मचारी को कहा बेटा भागते हुए जाओ महाराज को कहो कि मेरे कच्चे बच्चे ने, अनजान बच्चे ने आपको शराब दे दिया है, आपका कल्याण हो, आपका सदगति हो, आप उसका व्यवस्था कर लीजिए। अब यहां प्राय कथा में आपको एक बात कही जाती है कि महाराज परीक्षित के सर के ऊपर सोने का मुकुट था, उसमें कलयुग ने प्रवेश किया, लेकिन किसी भी भागवत के टीकाकार आचार्य ने यह सत्य नहीं माना है। वो तो कहते हैं जिसको भगवान जन्म से पहले दर्शन दे सकते हैं, जो कलयुग को झुका सकता है, कलयुग कभी उसके पास जा पटकने की हिम्मत कर सकता है? नहीं। फिर
फिर बोले देवती और वसुदेव को कंस जेल में कैसे डाल सकता है जो भगवान के माता पिता हो सकते हैं, उनके 6 बच्चे कैसे बांट सकता है। बोला वो तो भगवान की लीला है। बोला ये भी भगवान की लीला है, वहां भगवान को अवतार लेना था इसलिए वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में थे, और यहां परीक्षित को शराब देके भागवत का अवतार करना था, और कलयुग कुछ भी परीक्षित का बिगाड़ नहीं सकता। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो लिखा है कल युग ने उच्च उन ब्राह्मण के छोटे कच्चे बच्चे और उस शक्तिशाली न समझने वाले ब्राह्मण के अंदर सम्यक के बेटे श्रृंगी को कल युग ने अपना निशाना बनाया, और पहली बार ब्राह्मणों ने क्षत्रिय बल का अपमान किया, और तब से ब्राह्मणों और क्षत्रियों में बड़ा विभाजन हो गया। नहीं तो क्षत्रिय बल भीष्म जैसा होता था और ब्राह्मण बल व्यास देव जैसा होता था, तब वो सुरक्षित राज होते थे ये दोनों बलों का साथ। और ये पहली बार ब्राह्मण के द्वारा कलयुग का प्रभाव, कच्चे ब्राह्मण, शराब देना वाला ब्राह्मण महान नहीं होता है, आशीर्वाद देने वाला ब्राह्मण महान होता है। शक्ति भगवान ने दी है भले के लिए। इसके बाद क्षत्रियों ने वैश्यों का अपमान किया तो जैन धर्म अलग हो गया, और वैश्यों ने शूद्रों का अपमान किया बौद्ध आया। ये 4 विभाजन केवल वर्णों का गलत इस्तेमाल करने से, सही तरह प्रकार से न उपयोग करने से ये सारा विध्वंस हो गया है धर्म का। जो भी हो, परीक्षित महाराज को जैसे ये समाचार सम्यक ऋषि के शिष्य ने दिया कि गुरुजी ने कहा है कि आपका कल्याण हो, आपकी सदगति हो, लेकिन हमारे अनजान बालक ने आपको 7 दिवस में तक्षक के द्वारा कटने का श्राप दे दिया है। महाराज परीक्षित राजमहल में नहीं गए, राजकोष को नहीं देखा, रानियों को नहीं देखा, गुरुदेव को बुला के प्रणाम करके कहा मेरे बेटे जन्मेजय को राज तिलक दे दो। 4 बेटे थे, जन्मेजय बड़ा था, और महाराज ऐसे ही वहां सीधा गंगा जी के तट के सुखताल में आ गए। सबको त्याग दिया, मलवत देखा नहीं, और सुखताल में आके जैसे बैठे हैं सारे ब्रह्मांड के ऋषि आने लगे। परीक्षित महाराज राज त्याग के आए हैं, कोई अद्भुत घटना होने वाली है। और तब व्यासदेव आए, व्यासदेव के गुरुदेव नारद आए, व्यासदेव के पिता पराशर आए, ये सारे लोग आए। परीक्षित कहता है हे ब्राह्मणों, मैं एक ब्राह्मण का अपमान करने का बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई है, अब मैं अन्न जल का त्याग करके गंगा जी जो भगवान के चरणों से निकली है उसका शरण ले रहा हूं, अब आप मुझे बताइए जिसका निकट मृत्यु हो उसको क्या करना चाहिए। प्रार्थना कर रहे, अगर प्यासे होते और प्यास के कारण सर्प डाला होता तो अभी तक पानी तो पिया नहीं है, और 7 दिन और पानी पियेंगे भी नहीं, इसका मतलब प्यास कारण नहीं है, भगवत इच्छा कारण है। और कहीं कहीं भक्त, अब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के विपरीत क्यों लड़ेगा जब कृष्ण का भक्त है, कि कई राम के राम को वनवास का शराब क्यों देगी। कभी कभी भक्त ऐसा काम करते हैं भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए, वो भी भक्त होते हैं, अपनी बदनामी की परवाह नहीं है, लेकिन भगवान का काम होना चाहिए। वैसे एक दिन राम जी ने केकई की आंखों को पीछे से बंद करके, बचपन में आंखें बंद करती, मैया ने हाथ लगा के कहा ये तो हमारा राम जी। बोला मैया आंखें तब खोलूंगा जब वचन दोगी। बोला क्या वचन चाहिए। बोला कौशल्या की ममता है, वो ये काम नहीं कर पाएगी, मेरे आने का उद्देश्य तो ऋषियों का भला करना और असुरों का संहार करना है, आप 14 साल का वनवास देंगी तभी ये काम हो पाएगा। कहीं ने कहा मैं वचन देती हूँ बेटा, आपकी इच्छा है तो मैं काम करूंगी, ये मेरे को कलंक लगेगा लेकिन आपकी तो इच्छा पूरी होगी ना। तो इसलिए वशिष्ठ जी ने कहीं को कहा है कुल घातनी, भरत ने कहा है, लेकिन राम जी कहते जो साधुओं का संग नहीं किया होगा वो मेरी माता को दोष आरोपण करेगा, राम जी ने कभी दोष नहीं किया। ऐसे भक्त बड़े अद्भुत होते हैं, अपने सर के ऊपर कलंक का काजल लगा के भी भगवान की लीला को प्रतिष्ठित करते हैं। तो आज परीक्षित ने, शरीर तो एक दिन छूटना ही है, लेकिन भागवत हम सबको पढ़ने को मिला, ये तो आप देखेंगे तो दादा अर्जुन के कारण भगवत गीता मिला और पोते परीक्षित के कारण भागवत मिला है, दो ही दी महान शास्त्र इस धरती के ऊपर, इन दो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने दिए। ये दोनों भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही माना जाता है। तो परीक्षित महाराज वहां जब बैठ गए तो किसी ब्राह्मण ने कहा कि यज्ञ करा दो महाराज, किसी ने कहा कि दान दे दो, अभी तो कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब तक दिगंबर वेश में, जिसकी वेश दिशाएं वेश है, जिसको कुछ पहना हुआ नहीं है, सांवले रंग का है और लोग पागल समझ रहे हैं, लड़कियां और लड़के उनके पीछे पत्थर मारते हुए आ रहे हैं, और जैसे दूर से ये वृक चुरामणी सुखदेव महाराज को देखा, सब उठ के खड़े हो गए, महाराज परीक्षित उठ के खड़ा हो गया, केवल नारद जी और व्यास को छोड़ के सब उठ के खड़े हो गए। अब तो वो बच्चे भाग गए, लड़कियां भाग गई कि ये तो कोई पागल नहीं है, महाराज जिसके लिए उठा है, सब साधु समाज उठ गया है। जैसे सुखदेव महाराज वहां आए हैं, उनको आसन के ऊपर बिठा दिया, वहीं व्यास देव सिखाने वाला बैठा है, उनका गुरु वहां बैठा है नारद जी, लेकिन सुखदेव महाराज को व्यास आसन के ऊपर बिठाया है। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के कहता है, महाराज ये हमारा योग्यता नहीं है, हम तो राजा है, विषयी है, ये तो पांडवों के प्रति आपकी प्रीति थी, मेरे दादा अर्जुन से आपका सखापन था, उन्हों की कृपा से आज कृष्ण ने आपको यहां भेजा है। ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो आप 7 मिनट कहीं रुकते नहीं हो, गाय का दूध निकलता है तब तक चले जाते हो, अब जाना मत, अब तो 7 दिन कथा बतानी है, 7 मिनट नहीं, अब तो 7 दिन यहां आप रहिएगा, आप तो कृष्ण के भेजे हुए हो, वैसे कृष्ण ने ही प्रेरणा देके, इसको श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं एक चेतन चरितमृत का श्लोक कह के, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब कृष्ण किसके ऊपर कृपा करते हैं तब साधु गुरु मिलता है, और गुरु जब शिक्षा देता है तब भगवान मिलता है। तो परीक्षित गुरु ढूंढने नहीं गए थे, श्री कृष्ण ने परीक्षित के पास सुखदेव महाराज को भेज दिया। आपके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं, सबके हृदय में रह रहे हैं। आप कहो कि भगवान हमको आपसे मिलना है, तो भगवान आपकी सच्ची भावना से ऐसे महात्मा के हृदय में भी तो भगवान बैठे हैं, उसको कहेंगे जाओ इसको मेरे बारे में बताओ, इसको मुझसे मिलाओ। ये व्यवस्था सारी भगवान करते हैं, व्यक्ति के बस की बात नहीं है, भगवान की कृपा से आज सुखदेव महाराज आए हैं। अब परीक्षित का प्रश्न क्या है, यहां पहला स्कंद पूरा होता है। परीक्षित महाराज कहते हैं, जिस सब लोगों का सब समय सब जगह क्या कल्याण हो, ऐसा क्या मार्ग क्या काम है, और जिसका अंत समय निकट हो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह है वैष्णव का विचार। पहले सबका भला पूछते हैं फिर अपने बारे में बोलते हैं, केवल अपना स्वार्थ नहीं है, मैं राजा हूं, प्रजा का कल्याण हो वो पहला प्रश्न करते हैं। यहां पहला स्कंद पूरा होते हैं। दूसरे स्कंद में सुखदेव महाराज ये प्रश्न सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि मंगलाचरण करना ही भूल गए, कि महाराज आपका प्रश्न महान है, दूसरों का हित अपने मृत्यु सर के ऊपर है और दूसरे के भले का सोच रहे हो, आपने पूछा ना, बोला ये लोग वर्यम ते प्रसन्न, आपका प्रश्न महान है, ये लोग दिन को पैसे के पीछे कमाने के भागते हैं, रात को भोग में या सोए हुए पड़े होते हैं, इनके लिए तो बेकार के न्यूज़पेपर पढ़ने का बेकार का टाइम है, अरे भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है। तस्माद भारत सर्वात्मा, जो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, कैसे हैं, बोला भगवान है, भक्त वत्सल है, हरि है, ईश्वर है, नियंता भी है और दुख हरण करने वाले भी हैं। बोला क्या करना चाहिए, श्रोतव्यम, उसके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तव्यम, उसका कीर्ति गानी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यम और उसका स्मरण करना चाहिए। सब लोग सब समय सब जगह क्या करें, जिसका कल्याण, उसका उत्तर ये है, हरि कथा सुननी चाहिए। कोई सुनाने वाला हो, कोई सुनने वाला हो तो सुनानी चाहिए, अगर दोनों नहीं है तो पहले जो सुना है उसका स्मरण करना चाहिए। ये भक्ति के तीन अंग बता दिए। आगे परीक्षित ने कहा हो सकता है विचारों से तीन काम न हो पाए, कोई एक बता दो तीनों में। तब तो कहा सब ऋषियों ने निर्णय किया है कीर्तन, हरि कीर्तन, केवल हरि कीर्तन एक, क्योंकि कीर्तन करने वाले को और सुनने वाले दोनों को लाभ देता है। और कीर्तन का आचार्य सुखदेव गोस्वामी है। कीर्तन का अर्थ भागवत का कथा भी कीर्तन है, गीता का प्रवचन भी कीर्तन है, ये लीला कीर्तन है, और नाम कीर्तन हम करते हैं हरे कृष्णा, ये नाम कीर्तन है। तो भगवान के धाम का भी कीर्तन होता है, रूप का भी कीर्तन होता है, ना लीला का भी कीर्तन होता है, नाम कीर्तन भी होता है, ये सब कीर्तन है। एक कीर्तन करना चाहिए। एक बार व्यास देव स्नान कर रहे थे गंगा जी में, तो कुछ ऋषियों ने पूछा कि महाराज सबसे अच्छा युग कौन सा है। बोला कलयुग। अरे महाराज सतयुग अच्छा होता है, कलयुग बोले। फिर गंगा में डुबकी खा के निकले, पूछा सब में से अच्छा वर्ण कौन सा है, बोला शूद्र। अरे महाराज ब्राह्मण अच्छा होना चाहिए। फिर डुबकी खाई गंगा में, बाहर निकले कि सबसे आसानी से भगवत प्राप्ति कौन करेगा, बोला नारी स्त्री। बोला महाराज ये क्या कह रहे हो व्यास। बोला मैं गंगा में स्नान करके गंगा को जल लेके कह रहा हूं, ये सत्य कह रहा हूं, कलयुग के समान कोई और युग नहीं है। जो त्रेता युग में बड़ी बड़ी तपस्या करने से मिलता था, त्रेता सत्य में तपस्या से मिलता था, ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से मिलता था, महान द्वापर में भगवान की परिचर्या से, कलयुग में केवल नाम उच्चारण से मिल जाएगा। इतना आसान कहां आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। कलयुग का एक तो अर्थ है कलह करने वाला युग, जिसमें थोड़ी थोड़ी बात के झगड़ा होगा, कलह का युग है। लेकिन दूसरा अर्थ है केशव लयते इति कली, जो कृष्ण को तत्काल मिला दे वो कलयुग है। इसमें भगवान की प्राप्ति भक्तों को बहुत सरलता से हो जाती है। ऐसे एक प्रश्न उठा है कि परीक्षित ने जब कलयुग को अपने वश में कर लिया तो मार दिया होता तो किसी को संकट होता ही नहीं। तब कहा कि भले आदमी को सब में भलाई दिखाई देती है, परीक्षित को कलयुग में अच्छाई दिखाई दी कि कलयुग में लोग केवल भगवत नाम लेने से ही तर जाएंगे। और दूसरी अच्छाई क्या दिखाई दी। बोला सतयुग में आदमी जब तक कोई हाथ से पुण्य करता नहीं था, कितना भी सोचे फल नहीं मिलता था, और पाप का सोचे करे नहीं तो दंड मिलता था। लेकिन कलयुग का यह लाभ है कि आप दो किसी को कुछ नहीं, लेकिन मन से दान कर लो कि 100 गाय दान दी, 1000 ब्राह्मण को जिमवा दिया, तो आपका पुण्य मिल जाएगा। हमने कई बार कथा में यह कहा, लेकिन कोई मन से भी नहीं कर रहा है। जब ये उस और पाप कितना भी चिंतन करो, पाप का जब तक करोगे नहीं तब तक कलयुग में दंड नहीं मिलेगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा कलयुग में लोगों का भला जल्दी हो जाएगा। जब ये कलयुग ने सुना तो हंसने लगा। परीक्षित महाराज ने कहा हंस क्यों रहे हो। बोला महाराज आप समझते हो कि नाम जपने से भगवान मिलेगा, मैं इनको जपने ही नहीं दूंगा, ये सुबह उठने ही नहीं दूंगा, ये उठेंगे 5 बजे मैं इनके ऊपर जाके कंबल डाल दूंगा। ये तो कोई भगवान का प्यारा लात मार के कंबल को उठे तो उठे, नहीं तो मैं इनको जपने ही नहीं दूंगा। आप तो समझ रहे हैं कि ये भक्त बन जाएंगे, लेकिन ये बनने वाले नहीं है, ये हमारे चेले। ये 4 पाप जहां होते हैं वहां कलयुग का निवास। ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जहां मांस के ऊपर डॉक्टर ठप्पा लगाता है खाने के योग्य है तो कलयुग का उसके ऊपर प्रभाव है कि नहीं है। जगह जगह पे परमट शाप लगे हुए, शराब खाने खुले हुए, दुकान बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो इसका मतलब कलयुग बढ़ रहा है ना, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है तो रोगी बढ़ रहे हैं ना। कौन सा कल्याण का कार्य हुआ है, कहीं गौशाला बड़ी बन रही है क्या, कहीं कोई भंडारा ज्यादा चल रहा है क्या, कोई एक जगह चलता है तो बड़ा नाम हो जाता है, बाकी ये पाप का कार्य चारों ओर चल रहा है। जुआ खाने सारे आम खुले, सट्टा मार्केट पूरी जुआ खाने का सरकारी अड्डा है, सारी दुनिया की सरकार चार कलयुग के पापों में लिप्त है, तो सुखी और शांत कहां से होंगे? ये दो पाप ऐसे घिनौने इस धरती के ऊपर इस वक्त हो रहे हैं, एक गौ हत्या और एक भ्रूण हत्या, ये पूरी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रहा है, कहीं शांति कभी हो ही नहीं सकती है, कितना भी प्रयास करो ये दो पाप जब तक नहीं रोके जाएंगे तब तक इस धरती के ऊपर शांति संभव नहीं है। गौ हत्या और भ्रूण हत्या जैसा और कोई दुष्ट कार्य है ही नहीं, और वो सरेआम हो रहा है और सरकारों की तरफ से हो रहा है दुनिया सारी में। ये अधर्म का पहला प्रतीक है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महाराज टीवी की एंटीना को क्या बोलते हैं संस्कृत में? बोला कली ध्वज। ये कलयुग का झंडा है, जिसके घर के ऊपर देखो समझ लो यहां कलयुग का वास है। घंटों भर मूर्ख बैठे होते हैं ऐसे, कोई आए कोई जाए कोई पूछने वाला नहीं है, पति आए तो फ्रिज में पड़ा है खा लेना, टीवी नहीं छोड़ेगी। अब तो ऐसे उपकरण ये फोन आ गए हैं, सारा दिन ऐसे लगे होते, कोई कोई धर्म कर्म का काम तो सब लोगों को भूल गया। तो सुखदेव महाराज ने सब लोगों के कल्याण के लिए कीर्तन का विधान किया और भगवान चेतना महाप्रभु का अवतार ही कली करके युग धर्म कीर्तन का 10 दिशाओं में विश्व के कोने कोने तक करने का विशेष रूप से आदेश है। पृथ्वी ते यत्र, धरती के ऊपर जहां जहां नगर आदि ग्राम गांव है शहर है सर्वत्र सब जगह हरि नाम होना चाहिए, ये कलयुग का भविष्यवाणी है चेतना महाप्रभु। और अभय चरणार भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति ने इस भविष्यवाणी को सत्य किया है। आज पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई देश नहीं है जिसके अंदर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन न होता हो। जो गौरव था सनातन धर्म का, उस गौरव को कैसे इस महात्मा ने पूरे विश्व में स्थापित किया है। 500 सालों के बाद जब कोई खोज करके निकालेंगे धरती के अंदर, तो अफ्रीका के अंदर राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह मिलेंगे, उनकी भाषा में गीता भागवत मिलेगा, रशिया के अंदर उनकी भाषा में गीता भागवत मिलेगा, कहीं गौचेतना महाप्रभु का, कहीं राम जी का, कहीं जगन्नाथ जी का मंदिर मिलेंगे, तब इतिहासकार लिखेंगे कि ये 21वीं सदी में पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म भागवत धर्म का बोल बाला था, ध्वजा पताका फैला रही थी और उसके पीछे एक महात्मा महाप्रभु की प्रेरणा से गौरवाणी को लेके कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये अद्वितीय कार्य करके दिखाया। ये आश्चर्य होगा उस वक्त दुनिया को, ये आश्चर्य होगा क्योंकि आज नहीं तो 800 से ज्यादा दुनिया के अंदर केंद्रों में भगवान के और 80 से ज्यादा भाषाओं में भगवत गीता और भागवत उपलब्ध है। हमको दुख से कहना पड़ रहा है और खुशी भी हो रही है, रशिया के अंदर हम 3 महीना पहले थे तो हमको कहा आप आइए गर्भाधान संस्कार कराने के लिए, एक परिवार आया है और एक गर्भवती का सिमंत संस्कार हो रहा है। तो मैं देखा वो रशियन बैठे हैं, वो यज्ञ करके रशियन मंत्र उच्चारण करके गर्भदान संस्कार नव विवाहित का कर रहा है और गर्भवती स्त्री का पति को बिठा के वो सिमंत का संस्कार करा रहा है। मेरे को अच्छा लगा कि संस्कृति को वापस देखो, यहाँ जागृति हो रही है और भारत में ये संस्कार भूल गए, ये संस्कार यहाँ नामकरण संस्कार और बस एक विवाह संस्कार, वो भी आजकल कोर्ट में हो जाता है और तो यज्ञ करने के लिए भी घर में जगह तो है नहीं, कहां करें, होटल के अंदर कोई विवाह होता है क्या? अरे मंदिर के अंदर विवाह होता था पहले, हमको याद है विवाह करके भगवान का दर्शन करके, पति पत्नी दोनों भगवान के दर्शन करके फिर घर जाते थे, अभी तो ये सब संस्कार समाप्त हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो यहां परीक्षित महाराज को फिर आश्वासन देते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप सूर्य वंश के खटवांग महाराज ने तो 48 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लिया, दो घड़ी में। आपके पास 7 दिवस हैं, 7 दिवस मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, फिर तक्षक आए या मृत्यु आए आपको भगवान ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। और यहां क्योंकि बहुत से महात्मा बैठे थे, उसमें से कुछ महात्मा ज्ञान मार्ग के थे, कुछ ध्यान मार्ग के थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने सावधानी से कहा, पहला स्तर आत्म साक्षात्कार का है कि पहले तो घर से निकल के वन में चला जाए और फिर इस पूरी प्रकृति को भगवान का रूप माने, चंद्रमा को, सूर्य को देखे, अरे कितना एक प्रकाश पूरे विश्व को दे सकता है, ये तो भगवान की आंख है। ऐसे ये 14 भुवनों को, ये पूरा भगवान का शरीर मांगे विश्व रूप, ऐसा ध्यान करें। और दूसरे अध्याय में ये ज्ञानियों के लिए बोला, फिर योगियों के लिए जो बैठे थे उनके ध्यानियों के लिए बोला, हृदय में जो परमात्मा है ना उसका ध्यान करना चाहिए। और फिर कहा नहीं नहीं ये सब करो न करो, लेकिन भक्ति सबसे उत्तम है, जो भक्ति करेगा वो भाग्यशाली है। तो अंत में भक्ति का बोला, बोलनी भक्ति थी लेकिन बाकी सब थे, तो उनका, उनके सिद्धांत का भी सम्मान किया। एक बार हम जब पढ़ाते थे मेडिकल कॉलेज में, तो हमको एक बार शिक्षा दे रहे थे कि पढ़ाया कैसे जाए, प्रायः 3 घंटे का जो पर्चा होता है ना उसमें इतना परेशान बच्चा होता है कि जल्दी जल्दी करने में ध्यान नहीं दे पाता। तो हमको एक पर्चा दिया, बोला जो जल्दी, जो पहले देगा वो पहला नंबर, क्या लिखेगा ये नहीं बोला, जो पहले देगा वो पहला नंबर। और प्रश्न इतने आसान थे, 1 और 1 कितना होता और 2 को 2 से गुणा करो कितना होगा, तो सब लोग जल्दी जल्दी करने लगे। हम बैठे बैठे नीचे से देखा तो सबसे नीचे लिखा था कुछ मत करो अपना नाम लिख के दे दो, तो हमने अपना नाम लिख के दे दिया, सब देख रहे ऐसे जल्दी कैसे कर दिया, तो सब परेशान। थोड़ी देर के बाद सब लेके आ रहे 1 2 3 4, वो कहा कि देखो ये परेशान नहीं ही हुआ करो, पहले पूरा पर्चा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पढ़ के फिर लिखना शुरू किया करो। तो अंत में लिखा था कुछ नहीं लिखो, बस अपना नाम लिख के दे दो। तो जब ये परीक्षित महाराज को बताते हुए सुखदेव ने पहले लिख दिया विश्व रूप का ध्यान करो, फिर परमात्मा का ध्यान करो, फिर कहा ये कुछ करने की जरूरत नहीं, अब केवल हरे कृष्णा जपो। एक शब्द कह के आसान मार्ग बना दिया। और ये दूसरा स्कंद भागवत की बात कर रहे हैं, 10 अध्याय का ये दूसरा स्कंद है, जिसमें मुख्य है श्रवण। भगवान की कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति होगी, ये श्रवण का स्कंद है। और श्रवण के 3 अंग है, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, फिर मनन होना चाहिए, और फिर निध्यासन, फिर कुछ करना चाहिए। तो ये पूरा स्कंद ऐसे विभाजित है। अब आगे प्रसंग आता है कि 2 प्रकार से भगवान की मान्यता कैसे आती है, बोला 2 प्रकार से आती है, एक उत्पत्ति, भगवान की महिमा, कैसे भगवान सृष्टि बनाते हैं ये पता लग जाए तो भगवान चमत्कार को नमस्कार होता है। भगवान का ये चमत्कार का पता लगे तो नमस्कार करेंगे। तब प्रश्न ये उठता है, नारद जी एक दिन ब्रह्मा जी को कहते हैं, पिताजी सृष्टि तो आप ही करते हैं, तो इस सृष्टि के आप ही भगवान है ना। ब्रह्मा जी भागवत है कान के ऊपर हाथ रख के कहा, बेटा नहीं नहीं नहीं, भगवान तो वो है जिसकी आज्ञा से मैं सृष्टि करता हूं, और जिसको भगवान की माया ने मोहित नहीं किया है वो तो भगवान को जान सकता है, और जो भगवान की माया से मोहित है वो मेरे को या मेरे से पैदा किए हुए किसी और इंसान को भगवान मानने की मूर्खता करेगा। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि ना हाँ बेटा आप कह रहे हैं मैं भगवान, हाँ मैं भगवान, नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे नहीं नहीं नहीं, बोला भगवान तो हम तो उन, वो जो हमसे करवाते हैं वही हम करते हैं। और उसके बाद नारद ने सृष्टि कर्म बताया कि नारद को ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे होती है वो बताई। और यहां 4th अध्याय में आते आते सुखदेव महाराज को याद आया कि मैंने मंगलाचरण नहीं किया है, तो 12-13 श्लोकों में सुखदेव महाराज ने अद्भुत मंगलाचरण किया है, और उस मंगलाचरण में पूरी भागवत के सब श्लोकों को देखते हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना में ये श्लोक है, कीर्तनम स्मरणम क्या है, कुंती महारानी का, यहाँ यहाँ ये सुखदेव महाराज कहते यद स्मरणम यदीक्षणम, जिसको देखना, जिसका स्मरण करना, जिसका श्रवण करना, सारी भागवत में भगवत प्रवृत्ति का इससे आसान मार्ग नहीं है। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का दर्शन करो, भगवान का प्रसाद खाओ, बस हो गया। बहुत आसान मार्ग है, इतना आसान है, पूरी भागवत में यही एक सिद्धांत है। सुखदेव महाराज तो कहते हैं कि पापी से पापी होण है, आंध्र है, पुलकश है, यवन है, इसके ऊपर भी भगवान के भक्तों की कृपा हो तो ये भी भगवत का भगवान का नाम ले सकते हैं। ऐसे 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 पापी भगवान के भक्त बने हैं कि जिनका भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो वो भगवान के भक्त बन गए। ये प्राचीन काल को छोड़ो, अभी प्रभुपाद जी ने अफ्रीका के लोगों को भक्त बनाया, रशिया के लोगों को भक्त बनाया, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे भक्त बन गए हैं जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। भगवान के भक्त की कृपा हो तो हरि कीर्तन से सबका कल्याण हो सकता है। वो बात हमने कही थी, कलयुग सबसे महान है क्योंकि भगवान मिलेगा। बोला शूद्र क्यों महान है, व्यास देव ने जो तीन कहे थे, बोला शूद्र को कुछ नहीं करना है, बस सेवा का धर्म अगर पालन करेगा तो उसी धर्म से भगवान की पूजा हो जाए। बोला स्त्री महान क्यों है, बोला पति के पुण्य का आधा ले लेगी कुछ भी नहीं करे तो, और स्वयं पुण्य करे तो पति को अंगूठा भी नहीं मिलेगा, सारा उसको मिलेगा, वन वे ट्रैफिक है। लेकिन स्त्री से कोई पाप हो तो आधा पति के सर के ऊपर जाएगा लेकिन शर्त है कि स्त्री पतिव्रता हो। और शूद्र को तब पर, शूद्र केवल भगवत नाम लेने से महात्मा बन जाएगा, लेकिन एक उसके ऊपर बंधन है कि साधु संत ब्राह्मण की अवहेलना न करे, ये न कहे कि मैं महात्मा बन गया और ये नीच हो गया, ये दृष्टा न करेगा तो भगवान को तत्काल प्राप्त कर सकता है। अब आगे सृष्टि के कर्म बताया है, सृष्टि कैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, 23 अवतारों की गणना 7वें अध्याय में करके बताई है, एक अवतार नहीं गिनाया, नारद नहीं गिनाया, अपने बेटे को तो ब्रह्मा अवतार नहीं कह सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान नारायण ने मुझे 4 श्लोकों में सारी भागवत बताई। चतुर्श्लोकी भागवत साक्षात भगवान नारायण ने मुझे हाथ मिलाया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कमल के ऊपर प्रकट हुआ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं जल में गया, ऊपर गया तो मेरे को 2 शब्द ही सुनाई दिए, तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। तब शुद्ध सरस्वती ने मेरे को गोपाल मंत्र दिया 18 अक्षर का, मैंने उसका उच्चारण किया 1 साल पूरा देवताओं का, तब भगवान ने मुझसे हाथ मिलाया, कर स्पर्श, भगवान ने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया और कहा ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब तुम्हें ज्ञान विज्ञान उसका रहस्य उसके अंग ये चारों चीजें बताता हूं। और फिर भगवान ने आशीर्वाद देके 4 श्लोकों में पूरी भागवत बताई। 4 श्लोकों में भागवत है, 4 श्लोकों में भगवत गीता है, ये वेदों का सम्मान रखने के लिए, 4 वेद हैं तो सब चीजें 4 में आ जाती हैं, तो वेदों का सम्मान भी हो गया और चतुर्श्लोकी भागवत भी हो गई। पहले श्लोक में भगवान का संबंध ज्ञान बताया, भगवान कहते हैं मुझसे पहले कोई था नहीं, मुझके बाद कोई होगा नहीं, और बीच में जो कुछ है वो भी सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। मैं सुन रहा था अभी, उदाहरण ये दे रहे हैं भाई, गेहूं बोते हैं तब तो गेहूं होता है, जब काटते हैं फसल तो फिर गेहूं होता है, तो खेत में कोई भी किसान नहीं कहता है कि मेरे खेत में घास है, बोलता है मेरे खेत में गेहूं है, तो गेहूं नहीं होता है, होता तो घास है। तो ऐसे पहले भगवान बाद में भगवान, तो बीच में जो कुछ है वो भी भगवान से ही बना है ना, और कहीं से तो नहीं आया। और दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप बताते हैं, जो भगवान से भिन्न कुछ दिखता है वो माया है, वो माया की बात बता के फिर भक्ति का अंग, भगवान को प्राप्त करना भक्ति के अंगों की बात करते हैं। तो ये चतुर्श्लोकी तो अपने आप में 4 दिन नहीं 4 महीने कथा करें तो भी पूरी नहीं होगी। और उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा अब तुम इसका विस्तार करो, विपुली करो, भागवत का एक संकल्प करो, जहां भी कथा करो या किसको सुनाओ उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का जागरण करा दो। भक्ति पहले से है। ये एक बहुत अच्छा श्लोक है चैतन्य चरितमृत का, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाही। सबके हृदय में भगवान ने अपना प्रेम पहले से डाल दिया है, कोई हृदय भगवान के प्रेम से खाली नहीं। सबकी गठड़ी लाल, खोजत जानत नहीं तेते भयो कंगाल। सबके एक भिखारी था, रास्ते में सबसे रुपया रुपया मांग रहा था और बैठता था एक पुरानी पेटी के ऊपर। तो एक महात्मा ने कहा ये पेटी तुम्हारी इतनी पुरानी है इसका ही लाख रुपया मिल जाएगा, शीशम की पुरानी है, इसके ऊपर देखो कितना काशीकारी का काम किया हुआ है। बोला मेरा दादा भी इसके ऊपर, पिताजी इसके ऊपर बैठ के भूख मांग रहे थे, मैं भी मांग रहा हूँ। बोला कभी खोला है? बोला खोल के तो देखा नहीं है। बोला नीचे उतरो खोलते हैं, ताला खोल के देखें तो अंदर हीरा मोती पड़ा था। तो हीरे मोती की पेटी के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा था। तो सबके हृदय में भगवान ने प्रेम भरा हुआ है, बाहर प्रेम को ढूंढ रहे हैं। प्रेम बाहर होगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? मधु की बोतल है, बाहर से चाटने से मीठी तो नहीं लगेगी, ढकना खोलना नहीं आएगा तो मिठास कहां से आएगी? तो ये प्रेम बाहर कैसे आए? बोला श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। भगवान की कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे तो ये प्रेम जो अंदर पड़ा है ये बाहर निकल के आएगा। ये आपके पास पड़ा है, कहीं से लाना नहीं है आपको। कृष्ण का प्रेम भगवान का सबके हृदय में पहले से भरा है, भगवान ने भर के भेजा है। हमारे मित्र दीनबंधु एक उदाहरण देते हैं, ये जो नलकूप है ना, ये पंप, हैंड पंप, ये मई जून में जब गर्मी होती है ना तब चलाते हैं तो पानी आता नहीं, हवा आती है। हवा क्यों आती है? बोला गर्मी के कारण नीचे हवा कटी हो जाती है, तो हवा आती है पानी आता नहीं। इसका मतलब नहीं धरती में पानी नहीं है। तो फिर समझदार आदमी क्या करते हैं, गांव में आदमी क्या करते हैं पानी निकालने के लिए, ऊपर से बाल्टी लाके दो तीन जग पानी के डालते हैं तो हवा निकल जाती है, फिर चंपक चलाते हैं तो पानी आ जाता आता है ना। ऐसे भगवान कृष्ण का प्रेम इधर पड़ा है, बीच में माया ने इतना हवा भर दिया है, कानों के द्वारा दो चार बाल्टी कथा की जाएगी तो प्रेम अपने आप बाहर निकल गया। ये तो कथा उस प्रेम को जागृत करने के लिए है, बहुत सरल उपाय है। और इसके बाद 10 लक्षण भागवत के, पुराण को तभी पुराण कहेंगे, महापुराण तब जब 10 लक्षण होंगे। तो भागवत में कौन से 10 लक्षण है मैं नाम बताता हूं, एक श्लोक में बताया है, आपको याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो पूरी भागवत के स्कंद इन 10 लक्षणों की पूर्ति के लिए है। और श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है भागवत सब प्रश्नों का उत्तर है। सर्ग पहला, विसर्ग दूसरा, स्थान तीसरा, पोषण चौथा, पांचवा ऊती, छठा मनवंतर और सातवा ईशानु कथा, आठवा निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10 विषय है। तीसरा स्कंद सर्ग है, चौथा विसर्ग है, पांचवा स्थान है, छठा पोषण है, सातवां ऊती है, आठवां मनवंतर है, नवां ईशानु कथा है, ग्यारहवां मुक्ति है, बारहवां मुक्ति है, दसवां आश्रय है और बाकी बच गया बारहवां, वो है निरोध या प्रलय। हर एक स्कंद में इसका विभाजन किया है और सब में भी ये मिल जाते हैं, ऐसा भी विभाजन किया हुआ है। अब ये सर्ग विसर्ग क्या है, समय हमारे पास कितना हो गया, कथा तो आगे बढ़ानी है। स्वर्ग वो है जो भगवान विष्णु करते हैं, विसर्ग वो है जो ब्रह्मा जी करते हैं। देखो जीव आत्मा तो ब्रह्मा नहीं बना सकता ना, जीव आत्मा के कर्म तो उस जीव आत्मा के साथ रहते हैं और शरीर बनाने का मसाला भी ब्रह्मा नहीं बना सकता है। तो भगवान क्या देते हैं स्वर्ग में, जीवात्माएं, उनके कर्म और शरीर बनाने का मसाला। ब्रह्मा जी क्या करता है, जीवात्मा को लेता है, उसके कर्मों को देखता है और मसाला डाल के और नाना प्रकार के 84 जूनियां बनाता है। इसका उदाहरण ऐसे दे दें, अब घर में रसोईया रखा है, सामान आटा दाल चावल घी दही आप लाके दो दूध, इसका नाम तो हुआ सामान। रसोईया क्या बनाएगा, चावल बना दिया, दाल बना दिया, कचौरी बना दी, खीर बना दी। तो रसोईया क्या करता है, विसर्ग नाना प्रकार की आकृति विकृति बनाता है, और भगवान क्या देता है, सामान। तो सर्ग कहते हैं जो भगवान विष्णु करता है, और विसर्ग जो ब्रह्मा जी करते हैं। हम उदाहरण के लिए भक्तों को कभी बताते हैं, आसान समझने के लिए आधुनिक युग के लोगों को। ब्रह्मा जी के बाद बहुत बड़ा एक कंप्यूटर है, बहुत बड़ा मशीन है, उसके अंदर जीव को डालता है, उसके कर्म को डालता है, तो अंदर आ जाता है कि बड़ा दयालु था, बड़ा दानी था, बड़ा उदार था। ओ ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो देवता बनने के योग्य है। तो ब्रह्मा जी पांच भूत अंदर डालता था, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि डाल के बटन दबाता है, अंदर से देवता निकल के बाहर आ जाता है, बस इतना ही काम करना है। अब दूसरा जीव डाला और उसका कर्म डाला, निकम्मा किसी काम का नहीं, पड़ा होता था, लाते मारता था लोगों को, एक गधा बनना चाहिए, मसाला वही डाला बाहर गधा निकल के आया। ऐसे ब्रह्मा जी को 84 लाख के अलग अलग जूनियां बनाने के लिए उसके पास मॉडल बने हुए, उसको कुछ नहीं करना है, बस वो रिकंडीशन करके भेज देता है, माल वहां से आता है भगवान से, और बना के बाहर आकृति प्रकृति संस्कृति ये तो बनाता है ब्रह्मा जी, लेकिन मसाला सारा जीवात्मा उसके कर्म ये भगवान देते हैं। सर्ग विसर्ग हो गया, अपन तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद के 33 अध्यायों में दो विभाजन है, दो भगवान के अवतार है और दो प्रकार की सृष्टि है। दो भगवान के अवतार, पहले क्रिया प्रधान अवतार वारादेव है और ज्ञान प्रधान अवतार कपिल देव है, और दो प्रकार की सृष्टि है, असुरी सृष्टि और देवी सृष्टि। और क्या बताया था, दो प्रकार का स्वर्ग है, दो भगवान के अवतार है, दो विभाजन है, तो तीसरा स्कंद, और दो भक्तों का भागवत के ऊपर प्रवचन है। तो पहले 4 अध्यायों में उद्धव और विदुर का संवाद है जो हम आपको बता चुके, उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि कैसे करते हैं, तो कथा ऐसे मोड़ लेती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब शुरू की तो पहले तो अपने मन से 4 बच्चे बनाए, 4 कुमार का बेटा, आप सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो संसार में पढ़ेंगे नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे, वो भगवान के अवतार है, ज्ञान अवतार है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि पहले बच्चे वो भी आज्ञा नहीं मान रहे, तो ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के बीच में से क्रोध के कारण एक बच्चा नीले रंग का नीचे गिरा, रोने लगा, उसका नाम हो गया रुद्र। और उस रुद्र को कहा सृष्टि करो, उसने ऐसे भूत प्रेत बनाए जो ब्रह्मा जी को खाने आए। ब्रह्मा जी ने कहा आप ये सृष्टि बंद कर दो, प्रलय के समय आप अपना काम करना। ये प्रसंग सुनते हुए हमको आश्चर्य लगता है कि आजकल लोग बच्चे क्यों नहीं ज्यादा पैदा कर रहे, भूत पैदा कर रहे थे, इससे अच्छा है कमी हो तो ठीक है, अच्छे बना नहीं रहे थे। अच्छे हो तो भले 100 हो, और भूत एक भी बहुत भारी पड़ जाता है। अरे कृष्णा, सो ब्रह्मा जी ने 7 ऋषि प्रकट किए मन से, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि बढ़ाओ, सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, तो सीधे हाथ की तरफ से स्वयंभू मनु को प्रकट किया और वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। ये देवी सृष्टि है, ये ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए, दोनों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आप सृष्टि बढ़ाओ, अब स्त्री पुरुष होके और मैथुनी सृष्टि शुरू करो, मानसिक सृष्टि थोड़े समय के बाद चलती नहीं। तो दोनों ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन कहा पिताजी सृष्टि करें कहां, धरती नहीं है, धरती कहां चली गई, बोले धरती तो गर्भ सागर में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा मटर के दाने जितना जीव नीचे गिरा, सबके देखते देखते बहुत बड़ा उसका आकार हो गया, और यहां वाराहदेव का प्रकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और वाराहदेव समुन्द्र के अंदर गर्भ सागर में चले गए, और वहां जाके पृथ्वी को उठाया, और जब लेके आ रहे थे तो हिरण्याकश ने उनको ललकारा। तो फिर यहां बात आई, हिरण्याकश कहां से आया, तब एक दूसरी कथा का मोड़ आता है, वो तीसरे स्कंद में असुरी प्रकृति का संतान कैसे पैदा होता है। तब कहते हैं कश्यप जी की वैसे तो बहुत सारी पत्नियां हैं लेकिन दो का नाम बहुत प्रसिद्ध है, एक दिति एक आदिति। दिति का मतलब जो टुकड़े टुकड़े कर दे, खंड खंड कर दे, और आदिति का मतलब जो सबको साथ रखे। तो आदिति के तो 12 आदित्य हैं, जिसमें तो भगवान वामन देव भी एक पुत्र है, सूर्य भी आदित्य है, लेकिन दिति एक दिन शाम का समय, सायंकाल का समय यज्ञशाला, और सुइच्छा कपिल कश्यप देव को पकड़ के कहती है पुत्र संतान की प्राप्ति की इच्छा है। ऐसे काम के आतुरता के कारण आके उसको पकड़ लिया। कश्यप ने कहा देखो एक संध्या काल का समय है, इस वक्त भगवान रुद्र अपने भूत प्रेतों को लेके भ्रमण करते हैं, जो मूर्ख इस समय संबंध यौन करता है उसके उदर में भूत प्रेत पिशाच ये डाल देते हैं इस, और दूसरा ये यज्ञ स्थल है, तीसरा इस वक्त आपके अंदर काम भावना की विशेषता है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं किया। कश्यप ने भगवान की इच्छा समझी और फिर आया दिति वापस कहती है आके मेरे से गलती हो गई पतिदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, शंकर को तो मैं मना लूंगी, मेरा बहनोई है। लेकिन कश्यप ने कहा अभी तो तुम्हारे उदर में दो बड़े असुर प्रवेश कर चुके हैं, अब तो वो सारे संसार में हाहाकार मचा देंगे। दिति कहती है क्षमा करो मेरे को, मेरी रक्षा करो। बोला अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन तुमने अपनी गलती को कबूल कर लिया है, तुम मानती हो अपनी गलती को, तो तुम्हारा एक पोता महान भागवत पुरुष होगा। तब कहा कि दिति के घर में असुर हिरणाकश और हिरणाकशिपु का प्रकट्य हुआ, उनका पोता प्रहलाद महान भागवत हुआ। तो असुरी प्रकृति कैसे होती है, सो इच्छा हो, समय का ध्यान न हो, संध्या काल का ध्यान न हो, और देवताओं का आदर न करे, तो असुरी प्रकृति का संतान पैदा होता है। अब यहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने मेरे चार पुत्रों को कहा था बेटा आप बिल्कुल वैकुंठ के निकट रहते हो, कभी वैकुंठ का दर्शन करके आ जाना। एक दिन चार कुमार वैकुंठ जा रहे थे, 7 द्वार तो पार किए, 6 द्वार पार किए, 7वें के ऊपर भगवान के 2 द्वारपाल जय विजय खड़े थे। इन चार कुमारों के सामने लकड़ी रख के कहा अंदर नहीं जा सकते हो, कपड़े नंगे हो, पतंगे हो, कपड़े नहीं पहने हो, वैकुंठ में थोड़ी जा सकते हो। क्रोध आ गया, ऋषि हैं, सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र है, कहा वैकुंठ में भी द्वेष होता है, जाओ शराब देते हैं आपको, असुर बन जाओ। द्वारपालों ने रोका, भगवान विष्णु भागते हुए आए, गरुड़ के ऊपर भी नहीं चढ़े, विश्वकेशन खड़ाऊ लेके आए, उनको भी भागते हुए आए, कहा ब्राह्मणों आपके सम्मान करने में मुझसे देर हो गई, आप क्षमा करना, अच्छा किया इन्होंने आपको रोका, आपने इनको शराब दे दिया, मैं इनको वापस लेने के लिए अवतार लेके जाऊंगा, वापस लेके आऊंगा, और आपने अच्छा किया, मेरा हाथ भी ब्राह्मण के विपरीत हो तो मैं हाथ को भी दंड देता हूं, ये तो मेरे सेवक है, इनकी गलती मैं अपनी गलती मानता हूं। एक दिन लक्ष्मी जी को इन दोनों ने रोक दिया था, लक्ष्मी जी ने जाके शिकायत की विष्णु से कि आपके द्वारपाल मैं मालकिन मुझे रोका। बोला अभी देखो पत्नी के लिए डांटेंगे तो लोग कहते हैं कि ये पत्नी की सुनता है, तुम ठहरो कोई लीला करते। तो अब लीला क्या की, कुमार को मंगाया, कुमार को रोका तो उनको असुर बना दिया। लेकिन इसके पीछे एक और असली कारण क्या है, उन तीनों को 3 जन्म में असुर बने का श्राप दे दिया चार कुमारों ने, पहले वो हिरणाकश और हिरणाकशिपु बने, फिर वो रावण और कुंभकर्ण बने, फिर वो शिशुपाल और दंडवकर बने। पहले तो 2 को मारने के लिए भगवान ने 2 अवतार लिया, पहले वाराहदेव बन के आए और फिर नरसिंह भगवान बन के आए, रावण और कुंभकर्ण को श्री रामचंद्र ने और फिर शिशुपाल और दंडवकर को भगवान श्री कृष्ण ने आके वापस अपने धाम ले गए। तो ये 3 बार असुर बना कौन, जय और विजय, इसलिए इनको असुर कभी नहीं मानना, ये तो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए थे, ये तो वैकुंठ के द्वारपाल थे, लेकिन ये दिखाने आए थे। भगवत गीता में भगवान ने कहा है काम क्रोध लोभ नरक द्वार, तो काम का प्रतीक रावण है, लोभ का प्रतीक हिरणाकश हिरणाकशिपु है, और काम का लोभ काम क्रोध क्रोध का प्रतीक शिशुपाल और दंडवकर है। तो तीनों ने तीन दोषों का प्रदर्शन करके नरक का रास्ता दिखाया, लेकिन वो वैकुंठवासी थे, वो भगवान के द्वारपाल थे, तो उनको बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके जो अवगुण है वो हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु का ऐसे प्रकट्य होता है, और हिरण्यकश्यप बड़ा भाई वो चारों ओर गदा लेके घूमता है, वरुण देव से लड़ने जाता है। वरुण देव कहा है, नहीं तुमसे मैं नहीं लड़ूंगा इस वक्त, भगवान विष्णु जाओ, तुम्हारे को वो कुत्तों को वही अच्छी तरह से सजा देता है। नारद ने पूछा कौन है, भगवान बोला यही तो पृथ्वी ले जा रहा है, ये वारादेव, यही तो विष्णु है। अब तो हिरण्यकश्यप ने ललकारा, वारादेव ने सुना नहीं, क्योंकि पहले पृथ्वी को अपनी जगह के रखना चाहिए, काम करके फिर झगड़ा करना चाहिए। पहले इस पृथ्वी को अपने स्थान पे रखा, फिर मुड़ के देखा, बोला तुम जैसे कुत्ते भौंकते हैं, आओ आओ युद्ध करें। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो गया। ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा होता है, 14 मनवंतर बदल जाते हैं। शाम होने लगी, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान इससे खिलवाड़ मत करो, रात को तो असुरों का बल बढ़ जाता है, अब इसका उद्धार करो। और तब एक चमाटा ए तमाचा दे मारा, वारादेव ने इस हिरण्यकश्यप को धड़ाम से नीचे गिरा, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और वारादेव की जय जयकार होने लगी। ऐसे पहले 19 अध्यायों में वारादेव कैसे हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं और कैसे असुरों की उत्पत्ति होती है, इसका वर्णन है। अब आगे मनु और शत्रुपा, वो तो स्वयं ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न है, उन दोनों की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों में देवहूति, आकुटी और प्रसूति उनका नाम है। तो पहले तीसरे स्कंद में देवहूति के विवाह का वर्णन है। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी का पुत्र है, सरस्वती नदी के तट पे सिद्धपुर नाम के गांव में, अभी वो गुजरात में है, हम अभी वहां दर्शन करके आए, वहां तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दे के कहा, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो 5 दिन के बाद स्वयं वो मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपनी बेटी देवहूति को तुमसे विवाह कराने के लिए लाएगा, तुम उसको स्वीकार कर लेना। तो पहला विवाह इस धरती के ऊपर भगवान ने संजोग बनाया है, लड़के को लड़की को विवाह का विधान भगवान ने किया है। पहला विवाह पृथ्वी के ऊपर ये हुआ है। कोई बुलाने वाला नहीं था, कोई टेंट नहीं लगा, कोई बेकार का खर्चा नहीं हुआ। पति पत्नी, ब्रह्मा तो प्रेसिडेंट है इस पूरे ब्रह्मांड का, अपनी पत्नी के साथ रथ पे आया, गृहस्थी का सामान दिया और कुटिया में बैठे हुए कर्दम के साथ राजा ने अपनी पुत्री को विवाया, क्योंकि वो भगवान का साक्षात्कार किया हुआ भक्त था। उसके पास भौतिक धन नहीं था, लेकिन भगवान की भक्ति का बल था। आज 5वें दिन स्वयं वो मनु अपनी बेटी को पत्नी के साथ लाया और कहा, आप इसका वर्ण कीजिए, आपके योग्य है। और कर्दम को तो पहले याद था, और भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। आज ये विवाह हो जाता है मनु कर्दम का और देवहूति का। मनु तो आशीर्वाद दे के चले जाते हैं कन्या को, लेकिन देवहूति बहुत सेवा की, राजकुमारी थी लेकिन आज तपस्विनी बनी है। कर्दम एक दिन प्रसन्न होकर पूछते हैं, बोलो मनु पुत्री तुम्हारी क्या इच्छा है। बोला मेरे पिताजी को आपने कहा था कि संतान होने के बाद आप तपस्या करने के लिए चले जाएंगे, तो मनु समझ गया, तो मनु कर्दम समझ गया, तो कर्दम ने देखा कि देवहूति अभी भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि दुबली पतली हो गई थी तपस्या के कारण, राजकुमारी थी, वहां अब एक ऋषि के साथ रह रही थी, तो वहां एक बिंदु सरोवर है जो तपस्या को देख के भगवान विष्णु के आंसू से और आंखों से आंसू गिरे, उससे बिंदु सरोवर बना। उस बिंदु सरोवर में जैसे ही नहाने के लिए देवहूति गई, 1000 विद्याधर कन्याएं आई, उसका सुगंधित तेल से स्नान किया, श्रृंगार किया, अब तो वो बहुत राजकुमारी सुंदर हो गई। और कर्दम ने अपने योग बल से एक आकाश में उड़ने वाला विमान बनाया, बड़े बगीचों के साथ सुंदर। अब तो विद्याधर कन्याओं के साथ देवहूति और कर्दम मुनि नंदन कानन ब्रह्म देवताओं का भ्रमण करते करते वापस आके कर्दम ने अपने आप को 1 से 9 में विभाजित किया और 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और ये 9 कन्याएं देवहूति की, जिसमें अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी और अत्रि की पत्नी अनुसूया पतिव्रता, ये सब देवहूति की कन्याएं हैं। और ये नौ कन्याओं का विवाह हुआ और कर्दम जाने लगा तो देवहूति ने कहा, पति देव ये तो पुत्रियां अपने पति के घर जाएंगे, मेरा देखभाल कौन करेगा। तब तो कर्दम को याद आया भगवान ने पुत्र होने का वरदान दिया था, तो फिर कर्दम और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव का प्रकट्य होता है। बड़े सुंदर सुनहरे बाल है, तपस्वी कपिल देव प्रकट होते हैं, सारे देवता आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। तब मनु कहता है, बेटी अब सात कन्याओं को इन इन ऋषियों के साथ विवाह कर दो। तो देवहूति के कन्याओं का विवाह हो जाता है, लेकिन कर्दम के घर में जैसे कपिल देव का प्रकट्य हुआ, कर्दम ने कपिल देव की परिक्रमा की और फिर थोड़ा चिंता में थे। कपिल देव ने कहा, पिताजी आप तो चले जाइए, तपस्या भले कीजिए उत्तराखंड में, मैं मेरी माता को वही उपदेश दूंगा जिससे वो भगवत प्राप्ति करेगी। अब निश्चित होके कर्दम चला गया है। एक दिन देवहूति कहती है, बेटा कितने बड़े ऋषि की पत्नी हूं, लेकिन मैं भगवत तत्व तो समझना रह गया, अब लोगों के कल्याण के लिए और मेरी माँ के ऊपर कृपा करके, मैं स्त्री हूं, मेरे ऊपर कृपा करके उपदेश दो। कपिल प्रसन्न हो गया कि माँ सबका हित चाहती है। और फिर कपिल देव ने देवहूति को जो उपदेश दिया है, ये 33 अध्यायों में 19 पूरे हो गए, तो बाकी कितने बच गए, 20 और 13, 14 अध्याय। 14 अध्यायों में भगवान कपिल देव का उपदेश है माता देवहूति को, जिसमें सांख्या दर्शन से भगवान की दुर्लभ भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, केवल भगवान के भक्तों के संग से, और जिसके मुख से भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण होता है तो समझ लेना कि इसने पहले यज्ञ तप दान तीर्थ सब कर लिए हैं। और देवहूति माता ने तो कहा, बेटा काल का रूप भी बता दीजिए और ऐसा कोई उपदेश दीजिए कि लोगों को संसार से वैराग हो जाए। तो कपिल देव ने गर्भ गीता सुनाई है कि बच्चा कैसे माँ के गर्भ में आता है, 2 दिन के बाद कितना होता है, फिर 4 महीने में उसको बच्चे को साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है, फिर जीव परमात्मा से बात करता है, भगवान को वचन देता है कि इस मेरे को नरक से निकालो, मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ हूँ, इस बंद थैली के अंदर चारों ओर मल मूत्र है, बाहर निकल के मैं आपको आगे चौथे स्कंद के अंदर 31 अध्यायों में 4 विभाजन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 7 अध्यायों में धर्म के रूप में दक्ष यज्ञ का वर्णन है, जहां सती शरीर त्यागती है और शंकर का अपमान सारे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। तो धर्म का कार्य करे, लेकिन भगवान के परम भक्त परम वैष्णव शंकर का अपमान करे तो यज्ञ का फल नहीं मिलता, और दक्ष की पुत्री का शरीर का वहां त्याग करना पड़ा। क्यों सती से सरिती का शरीर त्यागने का कारण क्या है, आखिर ये सब हुआ क्यों शंकर जी के द्वारा, इसके पीछे तो रामायण में और रहस्यमय कथाएं हैं। 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज का चरित्र है। दक्ष यज्ञ पहला कर रहा था त्रिवेणी संगम में और दक्ष को बना दिया था ब्रह्मा जी ने अध्यक्ष सब प्रजापतियों का, वहां तो ब्रह्मा जी भी बैठे थे, सब प्रजापति बैठे थे, देवता बैठे थे, शंकर जी भी बैठे थे। दक्ष आया तो सब उठ के खड़े हो गए, ब्रह्मा जी नहीं उठे और शंकर जी नहीं उठे। तो दक्ष ने कहा, ब्रह्मा जी तो पिता है कोई बात नहीं, लेकिन ये भूतों के साथ रहने वाला शमशान में रहने वाला मेरा जमाता है, इसको तो उठना चाहिए ना, कौन इसको पुत्री देता, मेरी सती इतनी सुंदर पुत्री, क्या मैंने ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर इस भूत को दे दी, बहुत बड़ा अपमान किया। शंकर जी चुप रहे, बोले नहीं, लेकिन शंकर के गणों ने शराब दे दिया, बे 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 कर रहा है जोर जोर, बकरी बन जाओ। तब तो ब्राह्मणों ने शंकर के यज्ञ करें तो शंकर को बुलाना पड़ेगा, दो कह, और इसने कह दिया यज्ञ में शंकर का भाग नहीं, दो प्रजापति का आदेश है, तो कोई यज्ञ नहीं करे तो सारा संसार दुखी हो गया। तो दक्ष ने कहा, मैं यज्ञ करता हूं और नहीं बुलाऊंगा शंकर को, देखूं कैसे यज्ञ नहीं होता है। तो दूसरा यज्ञ कनखल में शुरू किया, हरिद्वार के पास गंगा जी के तट पे। अब ऊपर बैठे हुए कैलाश में पार्वती देखती है कि विमान जा रहे हैं, स्त्रियां अपने पुरुषों से ऋषि पत्नियों के साथ जा रहे हैं, देवता अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, पूछा बहनों कहां जा रही हो, ये है स्त्री का स्वभाव। कहीं से कोई बारात जाए, शोभा यात्रा जाए, जरूर बाहर जाएगी, झांकेगी, बहन कौन है, कहाँ जा रही है, ये तो उसको करना ही, उसके बगैर रह नहीं सकती। तो सती ने जाके बाहर पूछा, बहन कौन है, कहाँ है? बोला दक्ष के यज्ञ में जा रही है। अब तो कहती है शंकर वहां जाना ठीक नहीं है। अब सती को ऐसा क्रोध आया, भागवत में लिखा है सती की आंखें लाल हो गई। तब हम कहते हैं ये दूसरी शिक्षा है, स्त्री अगर अपने माँ बाप के घर मायके जाने के लिए कहे तो चुप करके हाँ करना, नहीं तो जला के भस्म कर देगी। सती की आंखें लाल हो गई है, शंकर ने कहा ये मरेगी जरूर, अगर यहां मैं रोकूंगा तो यहां जान दे देगी और वहां जाएगी तो वहां मरेगी। अच्छा है मरे तो अपने बाप के घर में जाके मरे, मेरे घर में क्यों बला पड़े। इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य ये है, शंकर जी कहते हैं यहां मरेगी तो अपने पिता का ध्यान करेगी, माता का ध्यान करेगी, वहां मरेगी तो मेरा ध्यान करेगी, तो वापस पार्वती बन के मेरे पास ही आएगी। तो भगवान शंकर ने तो बहुत बड़ा सिद्धांत समझा। और यहां सती रवानी हुई और शंकर जी के पास जाऊंगी तो शंकर जी मुझे कहेंगे दक्षिणायन, दक्ष की पुत्री, तो मेरे को लज्जा आएगी, अब ये शरीर में तुम्हारा दिया हुआ नहीं रखना चाहती हूं। और बैठ के और अपनी योग अग्नि में सती ने अपना शरीर त्याग दिया। और जो आए थे गण सती के साथ शंकर के, उन्होंने विध्वंस करना शुरू किया यज्ञ का। तो यज्ञ करने वाले भृगु ऋषि ने यज्ञ के अंदर आहुति डाली, ऋभु देवता निकले और शंकर जी के गणों को वहां से भगा दिया। अब नारद जी घूमते हुए आ गए कैलाश में, प्रणाम भोलेनाथ, कहां सती? बोले दक्ष यज्ञ में गई है। बोला गई नहीं, गई ऊपर। बोला क्या हुआ? बोला आपके गणों को बहुत बड़ा सताया है ऋषियों और ब्राह्मणों ने, ऋभु देवताओं से। ये तो शंकर जी का क्रोध होगा। अब तक वीरभद्र आया, उसने पहले दक्ष को उठाया और जो बकरे को काटने की छुरी पड़ी थी उससे दक्ष का गर्दन काटा और दक्ष ने कोने वाली अग्नि में स्वाहा कर दिया और भृगु की दाढ़ी को खींच के बाहर कर दिया, पूषा की आंख निकाली, भग के दांत तोड़ दिए और बाकी किसी देवता का हाथ, किसी का पांव तोड़ा, हाहाकार मच गया। अब सब देवता पट्टी बंधी हुई है, ब्रह्मा जी के पास गए, बोला पितामह हमारा हाल देखो। ब्रह्मा जी ने कहा ये देखो ये इन्विटेशन कार्ड मेरे को भी आया, जहां उपद्रव हो रहा है वहां नहीं जाना चाहिए, मैं क्यों नहीं आया? जब मैं नहीं गया तो तुम क्यों गए? और तुम्हें मालूम है जहां मैं नहीं, जहां शंकर नहीं, वहां यज्ञ होगा कैसे? तो तुमको इतना भी पता नहीं था, तब तो तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब हाथ पांव तोड़ा पत्नी की हत्या हो गई, ये नहीं कहा कि मेरे गणों को मारा। कहा आप ब्रह्मा चल के आए, इतने देवता, मैं आपको इनकार कर दूं, ये तो वैष्णव नहीं, आप कहो चलते हैं। और चल के वहां आए। बोला कहां है दक्ष का सर, कहां है? बोला सर को तो दक्षिण अग्नि में डाल दिया। बोला अब तो क्या किया जाए, किसका जाना था इधर सर? बोला बकरे का। बोला बकरे का सर, हमने तो सर बदलना आता है, मेरे बेटे के ऊपर हाथी का सर लगा सकता हूं, तो सुसर को बकरे के लगाने में कौन सी परेशानी है? ये तो हमारे वो काम तो आसानी से हम कर लेते हैं। अब तो बकरे का सर लेके लगाया, दक्ष जी ने प्रणाम मेरे जमाता और प्रणाम करने लगा, क्षमा याचना मांगी दक्ष ने। उस वक्त भगवान विष्णु प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो किसी ने कहा भृगु जी की दाढ़ी उखड़ गई थी, बोला बकरे के दो तीन यहां बाल लगा दो, दाढ़ी का काम कर लेगा, ससुराल वाला है चल जाएगा। का अपमान करे तो वो यज्ञ विध्वंस हो जाता है। तो ये पहले आकुटी स्वयंभू मनु की बेटी का विवाह, आकुटी का विवाह रुचि सेवा प्रजापति से हुआ, उसका बेटा यज्ञ और उसकी पत्नी दक्षिणा, इनका जन्म हुआ। वो यज्ञ ब्रह्मा स्वयंभू मनु ने गोद ले लिया और दूसरी बेटी देवोति की कथा करके आए, तीसरी प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, इसलिए दक्ष की कथा हो गई। आगे अब बेटों की बात बच गई तो उत्तानपाद के दो पत्नियां मुख्य थी और भी बहुत सारी थी, एक का नाम सुरुचि था, एक का नाम सुनीति था। सुनीति का मतलब नीति के ऊपर चलने वाली, वो बड़ी थी, और सुरुचि का मतलब अपनी मनमानी करने वाली। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था जो अटल रहने वाला होता है, और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था जो तत्कालीन होता है, समय ज्यादा रहता नहीं है। तो जिन्हें भगवान की भक्ति का अपमान किया कि भगवान की भक्ति के बाद भी तेरे गर्भ में आना पड़ेगा, ये तो भगवान की भक्ति का अपमान हो गया ना। और दूसरा ध्रुव महाराज को तो जैसे सांप के ऊपर पांव आ जाए किसी का, क्षत्रिय का पुत्र था, बड़ा क्रोध आ गया, वहां से वापस चला है। तब तक दासियों ने उसकी मां को समाचार सारा सुना दिया और सुनीति के पास ध्रुव पहुंचा है अपमानित होके। तो मां ने कहा है, बेटा जो तेरी सौतेली मां ने कहा है वो सही है, भगवान की भक्ति करोगे तभी वो पद मिलेगा, और वैसे भी तुम्हारे पिता उससे प्रेम करते हैं, हम तो बड़ी रानी होते हुए भी बाहर बैठे, लेकिन अब जाओ। तो ध्रुव ने पूछा भगवान मिलेगा कहां, बोला सभी क्योंकि जिसको द्वेष को ले जाओगे तो भगवान कहां बैठेंगे, आके हृदय में पहले ही दूसरे के प्रति ईर्ष्या पड़ी है, द्वेष पड़ा है तो भगवान नहीं आएंगे, ये अच्छी शिक्षा है। और ध्रुव जा रहा है तो सामने से नारद जी आ गए, यहां नारद को ढूंढने नहीं गए ध्रुव, नारद ने को तो प्रणाम भी ध्रुव ने नहीं किया। नारद ने कहा, बेटा तुम तो उत्तानपाद के बेटे राजा के पुत्र, जंगल में कैसे जाओगे, वहां तो हिंसक पशु है, वहां तो बड़ा कष्ट होगा, वापस चलो, मैं तुम्हारे पिताजी को समझा दूंगा, तुम्हें क्या है, तुम बच्चे हो, इसमें क्या कहता है, मैंने सुना है नारद जी आप सबको भगवान मिलाते हो और मुझे वापस आप संसार में फंसा रहे हो, अगर भगवान मिलाने का साधन कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपना रास्ता ना भूलो। प्रणाम नहीं किया, कहते हैं परीक्षा, नारद परीक्षा ले रहा था कि शिष्य कच्चा है कि पक्का है। उसने कहा सामने वाली कुटिया दादू दयाल की है, अब ये पुलिस वाला घोड़ा बांध के जाके कुटिया में बैठा, लोग सत्संग वाले आए, थोड़ी देर के बाद जिसके सर के ऊपर मार के आया था वही दादू दयाल था, वो आके सत्संग करने बैठा। अब इसको लज्जा आ रही है कि मैं जिसको गुरु बना के आया उसको तो पहले ही सर के ऊपर थप्पड़ मार, ये बेचारा दुखी बैठा हुआ है। कथा पूरी हुई, सब गए, इसने जाके प्रणाम किया, बोला गुरुदेव मेरे से बड़ी धृष्टता हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, आपके सर के ऊपर मार दिया, मुझे क्षमा करना। और आप अपना हंसते हंसते दादू दयाल कहते, अरे मटका लेके जाते हैं तो भी लोग बजा के लेते हैं, तू गुरु करने आया बजा के ले लिया, कोई बात नहीं तुम बजा के गुरु ले लो तो गुरु बजा रहा है, तो भगवान ने हृदय से उस दर्शन को अलोप कर दिया, तो छटपटा के आंखें खोली तो भगवान को साक्षात सामने देखा। तो उस वक्त ध्रुव की इच्छा प्रार्थना करने की थी, 5 साल का बच्चा था, अभी तक पढ़ा नहीं था, भगवान ने अपने शंख कपोल को लगाया, धारावाहिक ध्रुव के मुख से बहुत सुंदर प्रार्थना हुई, ध्रुव की प्रार्थना अद्भुत है, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोला 60,000 साल तक पृथ्वी के ऊपर राज करना, तुम अपने पिता से बड़ा राज चाहते थे, तुम्हारे लिए मैंने ध्रुव लोक बनाया है, प्रलय काल में भी जिसमें कभी प्रलय नहीं होगी। अब भगवान ने जब अन्य पुराणों में लिखा है कि ध्रुव महाराज के पास एक दिन नारद ने जाके देखा, शिष्य मेरा आंखों से धारा तो आंसू बह रहे हैं, रो रहा है आंखों से, बोला बेटा दुखी क्यों हो, बोला गुरुदेव हीरा मिला था भगवान और मैंने उसकी जुदाई में उसकी मां सुरुचि प्राण दे दिया। ध्रुव को क्रोध आया और यक्षों के साथ महायुद्ध करने लगे। यहां एक सिद्धांत पूरी भागवत में बार बार आएगा, भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव को क्रोध आया, उस वक्त स्वयंभू मनु महाजन नीचे उतर के आए 12 महाजनों में, कहा बेटा एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तुम यक्षों का वंश क्यों नाश कर रहे हो, अरे भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो अपने से छोटों के ऊपर दया करते हैं, बराबर वालों के साथ मैत्री करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं, युद्ध को बंद कर दो। और ध्रुव ने अपने दादा की कहना माना, स्वयंभू मनु का, ये वैष्णव का संग भगवान के दर्शन के बाद भी बहुत आवश्यक है, भक्ति तो मिलती है संग से लेकिन भगवान मिलने के, यहां पहले तपस्या कर रहे थे, ध्रुव मंदिर है आज भी वहां, तो उठ के जाने लगे तो गंगा जी ने कहा कि आप जैसे मान भक्त यहां कथा करने आए हैं हमें अच्छा लग रहा है, आप जा क्यों रहे, बोला आपका आवाज आता है किल किल इसलिए मैं कथा नहीं कर पा रहा हूं। गंगा जी ने कहा अब यहां आवाज नहीं आएगा तो आज भी आप लक्ष्मण राम लक्ष्मण झूले के पास गंगा में कोई आवाज नहीं है, कोई तरंग नहीं है, बिल्कुल सीधी जाती है। फिर गंगू जी फिर ध्रुव बदरी का आश्रम चले गए और वहां स्नान करते मन अलकनंदा में साधु संग करते हरि कथा करते, एक दिन विमान आया वैकुंठ से, नंद और सुनंदन विमान लाए और कहा कि अब ध्रुव तुम चलो वैकुंठ। ध्रुव ने स्नान किया, आचमन किया, संतों को प्रणाम किया, तब मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई। बोला ये मृत्यु लोक है, आप ऐसे कैसे ध्रुव ऐसी शरीर से विमान में जाओगे, हमारे को स्पर्श भी नहीं कर, बोला तुम नीचे बैठ जाओ, सर रखो, मैं तुम्हारे सर के ऊपर, याद आए न आए, लेकिन ध्रुव महाराज की तरह कोई मेरा शिष्य भविष्य में ऐसा महान भक्त बने और भगवान को कहे कि मेरे गुरुदेव को भी ऊपर लेके आओ तो मेरा उद्धार हो सकता है, ये उनकी निम्रता का भाव है। ध्रुव महाराज आज भगवत धाम चले गए हैं। अब आगे ध्रुव के वंश में कैसे महाराज वैण होते हैं, और वैण बड़ा दुष्ट राजा हुआ, तो उसके पिताजी ने